मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون। سورة معارج کی ان آیتوں پہ درس چل رہا ہے کئی مہینوں سے۔ अल्लाह ने फरमाया इंसान जल्दबाज है, बेसब्रा है, जरा सी कोई मुसीबत पहुंचे एकदम जल्दबाजी में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनके अंदर ये सिफात हैं, तो वो सिफात अपने अंदर पैदा कर लोगे तो खुशियों भरी जिंदगी मिल जाएगी। देखो आज हर आदमी खुशी के पीछे भाग रहा है, पागल हो रहा है। पैसा क्यों कमाते हैं? खुशियां चाहिए। इज्जत क्यों चाहते हैं? भाई इससे खुशी मिलती है। शोहरत क्यों चाहते हैं? इसलिए कि इससे खुशी मिलती है। लेकिन कमाल की बात है, इज्जत भी आ गई, पैसा भी आ गया, खुशी फिर भी नहीं आ रही। सहूलतें भी आ गई, इसके बावजूद डिप्रेशन की बीमारियां बढ़ रही हैं, स्ट्रेस, जहनी तनाव, परेशानी ये कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। तो अल्लाह ने फरमाया चंद अपने अंदर बातें पैदा करो, वो अमाल इख्तियार करो, वो अमाल इस बात की अलामत होगी कि तुम्हारा अब अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो गया है। तो उसकी जिंदगी में, उसके बदले में अल्लाह तुम्हें इत्मीनान वाली जिंदगी अता करेगा। तो वो अलामतें क्या हैं? इल्लल मुसल्लीन, सबसे पहली अलामत यह है कि जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं वो नमाज पाबंदी से कायम करते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा मसला पता है क्या है? पिछले जमाने में एक मसला था मुसलमानों के साथ, अब दो मसले आ गए हैं। पहले जमाने में एक मसला ये था कि जब आप शरीयत को फॉलो करते, दाढ़ी रखनी है आपने, नमाज पढ़नी है, तो सिर्फ शैतान रुकावट बनता था, आपका दिल नहीं चाह रहा, सुस्ती हो रही है। अब शैतान भी रुकावट, कल्चर भी रुकावट। कल्चर ऐसे रुकावट कि लोग ये चाहते नहीं है कि हमें लोग मजहबी कहें। हमें क्या कहें लोग? यार मजहबी आदमी है। लोग कहते हैं, हमें लोग कहें न्यूट्रल, एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, मजहब वजहब से इसका ताल्लुक नहीं है। मैं एक दफा कहीं मार्केट में था तो एक शख्स ने, मोबाइल वाले ने, दो चार बातें अल्लाह रसूल की कर ली किसी कस्टमर के पास। मोबाइल वाला बहुत मालदार था जिसकी शॉप थी ना, दो चार बातें अल्लाह रसूल की कर ली तो सामने वाले ने बोला, बड़ा मजहबी हो गया लग रहा है, बड़ा मजहबी हो गया, यानी बड़ा मौलाना बन रहा है, बड़ा मुल्ला बन रहा है। तो उसने फौरन नहीं 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 इस तरह करके ना, एक दफा एक, देखो सोसाइटी को समझने के लिए ना उसी माहौल में समझ में आती है सोसाइटी, किताबों से सोसाइटी समझ में नहीं आती है। मुझे याद एक दफा एक साहब के साथ मैं बाइक पे पंचर लगवा रहा हूं, तो बाइक वाले ने उन साहब के बारे में कहा, उनकी दाढ़ी थी, तो उस मेरी भी थी लेकिन मसला उनके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ ना, इसलिए मैं उनका वाक्य सुना रहा हूं। तो पंचर वाले ने बोला, यार इसकी बाइक पे जल्दी पंचर लगा दे, थोड़े नमाज पढ़नी होगी, इन्होंने ना थोड़े सूफी से आदमी लग रहे हैं तो नमाज पढ़ने जाना होगा। उसको गुस्सा आ गया ना, गुस्सा इससे आ गया, मुझे मुल्ला टाइप का क्यों बोल दिया इसने कि मैं नमाज पढ़ने जाना होगा। तो इससे पता चलता है कि सोसाइटी इसको भी पसंद नहीं कर रही, पढ़ा लिखा तबका, कि हम पे मजहब की छाप लगे। वो कहते हैं एज ए कल्चर हम मुस्लिम हैं, कल्चर की हैसियत से आईडी कार्ड में हमने मुस्लिम लिखवाया हुआ है, क्योंकि इसको बुराई नहीं समझा जाता, ऐब नहीं समझा जाता। ऐसे तो ईसाई भी अपने मजहब के खाने में ईसाई लिखवाते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं अपने आप। तो बहुत से हमारे जो लिबरल मुसलमान है, हमारा जो यंग तबका है, नौजवानों का तबका, वो कहता है यार ठीक है, वी आर मुस्लिम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम क्या हैं, मुस्लिम हैं, अब्बा का इंतकाल होगा तो जनाजा भी होगा, गुसल भी होगा, कफन भी होगा, ठीक है, हर कौम का एक कल्चर होता है, एज ए कल्चर वेरी गुड। बाकी ये कि मुफ्ती से फतवा लें कि ये कारोबार हलाल है या हराम है, और जो है वो इस तहकीक में लगे कि जायज नाजायज, नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ने जा रहे हैं टोपी पहन के, जुम्मा पढ़ लेते हैं लोग, इतनी थोड़ी लोगों में है कि जुम्मा तो यार सब पढ़ते हैं तो हमने भी पढ़ लिया तो क्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सर नमाज का टाइम हो रहा है मुझे नमाज के लिए जाना है। ये थोड़ा सा दफ्तरों में इसको क्या समझा जाता है, थोड़ा मायूस समझा, ये लगता है पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये मौलवियों के चक्कर में फंसा हुआ है। बहुत बड़ी तादाद, मैं नहीं कह रहा सब ऐसे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में यंगस्टर में बहुत बड़ी तादाद ऐसी पैदा हो चुकी है, लड़कियों में तो ज्यादा है, ये जो यूनिवर्सिटियों में लड़कियां पढ़ रही हैं उनको मॉडर्न बनने का शौक ज्यादा है। कोई दुपट्टा ले लेगी ना कभी, क्यों, तो वो ये कहने में उसको शर्म महसूस नहीं होती कि भाई मैं मेरी पर्सनल मेरी राय है, ये कहना कि अल्लाह का हुक्म है, ये कहते हुए उसको शर्म आती है कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैंने पर्दा किया हुआ है या मैं स्कार्फ इसलिए लेती हूं। तो पढ़े लिखे लोगों में ये बीमारी बहुत ज्यादा है। तो देखो जब किसी चीज पे चलो ना कॉन्फिडेंटली चलो, जो सेकुलर स्टेट्स हैं, रियासतें, अमेरिका, कनाडा, जहां उनकी बहुत सारी मनफी चीजें हैं, वहां मैंने एक मुस्बत चीज भी देखी है। वो मुस्बत ये देखी है, वहां के पढ़े लिखे आदमी को ना मजहब को फॉलो करते हुए शर्म महसूस नहीं होती। गोरा दाढ़ी रखेगा, डंके की चोट पे रखेगा, और उनके यहां उसको बुरा भी नहीं समझेगा कोई। यानी जैसे एक अंग्रेज अगर मुसलमान हो गया ना, दाढ़ी है, टोपी है, शलवार टखने से ऊपर है, तो उसको पता है कि सोसाइटी में कोई दूसरा गोरा, कोई गैर मुस्लिम मुझे टेढ़ी नजरों से नहीं देखेगा। बोलेगा भाई इसकी एक राय है, इसका एक ख्याल है, इसकी एक थॉट है, तो ठीक है, सही है भाई। हमारे यहां क्या होगा कि जब सर पे भी टोपी भी आ गई ना, तो लड़के को टोपी पहनते हुए भी शर्म आ रही होगी, लोग बोलेंगे ये क्या बन गया, मुल्ला बन गया, मौलाना बन गया। तभी हम अल्लाह माफ फरमाए, हम भी ऐसे ही थे। तो मस्जिद में जो है ना, बड़े बालों के, मेरे बाल ऐसे नहीं थे जैसे अब, तो बिल्कुल फारिगुल बाल हो गया, मेरे बहुत घने खूबसूरत बाल थे, और ऐसे उसकी आगे से स्टाइल भी शुरू में थोड़े दिन हमने मारे अल्लाह ताला से, फिर तौबा की हमने। तो वो क्या थे कि हम जब टोपी पहनते थे ना, तो पहले मस्जिद में जाते हुए कि थोड़ी पफ खराब ना हो हमारी, बहुत स्टाइल से टोपी, जैसे ही बाहर निकले जेब में डाल, ताकि लोग हमें समझे कि हम क्या हैं, मॉडर्न। तो खोपड़ी काम नहीं कर रही थी, इससे इंसान कहीं कभी नहीं रहता। जो काम करना है डंके की चोट पे करो भाई, सही है, तो पहननी है तो पहनेंगे, तुझे क्या तकलीफ है भाई। अच्छा, ये बीमारी गरीब लोगों में ज्यादा है, जब वो दीन पे आते हैं ना, तो उनको ये ज्यादा होता है कि हमें, यानी इज्जत के लिए उनको कुछ अलग से कुछ काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने अंग्रेज गरीबों से मेरी मुराद ये है कि उन गरीब मुल्कों की बात कर रहा हूं, लेकिन जो मुल्क इकोनॉमिकली मजबूत हैं, उनको इज्जत के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। उन लोगों में मैंने बहुत कॉन्फिडेंस देखा है, वो आपको, आप हैरान होंगे, मैं जब बाहर मुल्कों में जाता हूं, मैं इतनी ऊंची ऊंची पोस्टों पर लोगों को देखता हूं, उनकी शलवारें आधी पिंडलियों तक, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, और ऐसे तहज्जुद के निशान उनके चेहरों पे, और आप उनकी उनकी जॉब देखोगे तो हजारों लोग उनके मातहत होकर काम कर रहे होंगे। वजह क्या है कि वो इस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि अब उनको लोगों से मस्नूई इज्जत की भीख मांगनी नहीं पड़ती। इसलिए शरीयत ये कहती है कि हमेशा कोशिश करो कि आपका स्टेटस जो है वो क्या रहे, बुलंद रहे, किसी से झुकना ना पड़े किसी के आगे आपको। तो हमेशा अपने अंदर इस्तिगना पैदा करो, भाई हमें लोगों की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने बलबोते पे जीना जानते हैं, कोई हमें इज्जत दे ठीक है, नहीं दे तो हमें क्या जरूरत है भाई, हम तुम्हें इस काबिल समझते ही नहीं है कि हम तुम्हारी इज्जत के भूखे हैं। तो इसलिए अल्लाह ये चाहते हैं कि जब कोई अल्लाह का गुलाम बने ना, तो अपने आप को सुपुर्द करे अल्लाह के, ये ड्रामेबाजी ना करे वो, कि उसको पता है कि शरीयत सही है लेकिन वो शरीयत पे चलते हुए शर्म महसूस कर रहा है। अजान देते हुए लोगों को शर्म आती है, ये ज्यादा अच्छी मिसाल आ गई मेरे जहन में। मैं जो ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन का शरीयत में मसला ये है कि अगर ट्रेन कहीं जंगल में है, अगर स्टेशन पे रुकी हुई है किसी शहर में, वहां अगर आजान हो गई है स्टेशन पे या उस शहर में हो गई है, तो फिर आपको फर्ज नमाज के लिए दोबारा अजान कहने की जरूरत नहीं है, फिर शरीयत में लाजिम नहीं है आपके ऊपर, सुन्नत मौकदा नहीं है। फिर बस अजानुल हय्य यकफीना, अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि महल्ले की अजान काफी है। लेकिन अगर ट्रेन जंगल में है या आप जंगल में हो, फिर आपने अगर नमाज पढ़नी है तो शरीयत का हुक्म है कि अजान कहो। यहां आदमी को शर्म आती है, अबे मैं नमाज पढ़ते हुए इतना मसला नहीं होता, अजान कहते हुए क्या होती है। मेरा कॉलेज का दौर था, उस वक्त हमें भी थोड़ी थोड़ी मुल्ला बनते हुए शर्म आती थी कि लोग हमें मुल्ला कहेंगे, हम भी उन्हीं लौंडे लपाड़ों में ही पले बढ़े ना। तो उन दिनों की बात है, मैं नमाज तो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता था। मैं पंजाब के सफर पे था और ट्रेन कहीं जंगल से गुजर रही थी, फजर की नमाज का टाइम था। मैं नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन मेरे जिम्मे, अल्लाह का शुक्र है कोई फर्ज नमाज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अब क्या किया, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ फजर की। मुझे ख्याल हुआ कि भाई मुझे तो अजान भी देनी है। अब मैंने सोचा मैं अगर अजान दूंगा लोग बोलेंगे अरे ये तो मुल्ला निकला पूरा। अबे ये क्या निकला, अबे ये तो पूरा मुल्ला है। तो अब मुझे थोड़ी सी शर्म सी महसूस हुई कि यार मैं अपने आप को मुल्ला क्यों कहना हूं। मुझे क्या पता था अल्लाह मुझे टोटल मुल्ला ही बना देगा। स्कूल में हमारे एक प्रोग्राम हो रहा था पांचवी क्लास में, 14 अगस्त मनाई जाती है ना यौम आजादी, टैबलो होता है ना स्कूलों में, उसमें कोई फौजी बना कोई किसान बना, मिल्ली नगमा चलता है उसमें, तो उसमें मुख्तलिफ किरदार अदा करने होते हैं। तो एक मिल्ली नगमा है ना, बड़ा मशहूर मिल्ली नगमा है, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, तो उसमें किसानों का तस्करा भी आया, फौजियों का तस्करा भी आया, हर मजदूरों का तस्करा भी आया। तो जब वो नगमे में जिस कैरेक्टर का भी जिक्र होना था ना, तो उसको दिखाना था, उस बच्चों का एक प्रोग्राम था। मिसाल के तौर पर जब मजदूरों का तस्करा आया तो कुछ बच्चों को मजदूर बना के खड़ा किया गया, जब फौजियों का तस्करा आया तो कुछ बच्चों को फौजियों की वर्दी पहनाई गई। तो उसमें कुछ मजहब का भी था, तो उसमें कुछ मौलाना साहब दिखाने थे उन्होंने। जब उस नगमे में कुछ कुरान का या हदीस का कोई आया होगा, मुझे अभी याद नहीं, तो उसमें दिखाना था कि मौलाना। अब मेरे वाले साहब चूंकि हाफिज कुरान थे अक्सर, वैसे तो पाकिस्तान नेवी में थे लेकिन हमारा घराना मजहबी था, तो जब इमाम साहब मस्जिद में नहीं होते तो हमारे वाले साहब नमाज पढ़ा देते थे, और हाफिज भी थे और मुतशर्रे दाढ़ी भी। तो हमारे स्कूल की जो टीचर्स थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अब्बा चूंकि मौलाना टाइप के हैं तो इसी को बना दो मुल्ला। मुझे सफेद कुर्ता शलवार और जालियों वाली चाइना वाली टोपी और एक किताब मेरे हाथ में, जैसे ये कुरान है यूं जब नगमे के वो अल्फाज चलेंगे तो मुझे दिखाया जाएगा एक शरीफ सा इंसान। भाई मैं आपको बताऊं, मुझे इतना गुस्सा आया कि लोग मुझे मुल्ला कहें। मैंने कहा मैं ये नहीं बनूंगा, जाओ मैं मुल्ला नहीं बनूंगा, मुझे कुछ और बनाओ, मजदूर बना दो, फौजी बना दो, कुछ भी बना दो, मुल्ला नहीं बनूंगा मैं। कैसे सर पे जाली हूं, क्योंकि शोबाजियों का दौर था ना, पांचवी क्लास का बच्चा देखो कैसा होता है। इसलिए मैं कहता हूं ये बच्चों को हल्का मत समझो, बचपन से ही तरबियत जरूरी है। तो अब हमें यह था कि यार मैं मुल्ला सा अजीब सा लगूंगा यार मैं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुल्ला का लफ्ज मेरी तरफ वो कपड़े भी मंसूब नहीं होंगे, हमारे यूनिफॉर्म पैंट शर्ट था ना, तो मैंने कहा वो लिबास भी मैं नहीं पहनूंगा, मुझे फौजी बना दो मजदूर बना दो, मुल्ला नहीं बनाऊंगे मैं, नहीं बना। मेरे कजन को बनाया फिर उन्होंने, कमाल की बात है वो मुल्ला नहीं बना, हम क्या बन गए, सच्ची मुच्छी में मुल्ला ही बन गए हम। तो खैर, तो ये यंगस्टर जो है ना, हमारे नौजवानों के दिलों की एक वो है कि यार ये लोग हमें ये ना कहें कि ये क्या है, मुल्ला है। देखो लिबास तो जो मर्जी पहनो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो चाइना वाली टोपी और बगैर कॉलर का कुर्ता शलवार वही लगें जैसा मैं मुझे लगवा रहे थे वो लोग, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नमाज पढ़ते हो लोग आपको मुल्ला कह दें, आप दाढ़ी रखते हो लोग आपको मुल्ला कह दें, ये बेकार बातें हैं। ये मस्नूई इज्जतें के पीछे कभी भी मत जाया करो। देखो इज्जत हमेशा उसकी होती है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिस चीज को ठीक समझता है उस पर मजबूती से डट जाए। कंफ्यूज लोग जो होते हैं ना, वो कहीं के भी नहीं होते। आपको पता है हमारे हुक्मरान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं शलवार कमीज में जाए उनकी इज्जत ज्यादा होती है। गोरों में की एक ये खासियत है, हमारे एक दोस्त जर्मनी में बहुत रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिसको यहां पर इंग्लिश जो पाकिस्तानी आता है प्रॉपर जर्मन या प्रॉपर इंग्लिश ना आती हो ना, वो अगर इंग्लिश या जर्मनी में बात करे ये लोग उसको बुरा समझते हैं कि अपनी जबान छोड़ के क्यों दूसरे की जबान में बात कर रहा है, या तो इतनी इतनी स्पीड से बोलता हो ना जैसे वहां के मकामी लोग बोलते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, अपनी जबान आते हुए भी किसकी जबान बोल रहे हैं, दूसरे की जबान बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में मुहज्जब कौमें इसको ऐब समझती हैं कि आप बिला वजह अपना कल्चर क्यों छोड़ रहे हो, अगर उसमें कोई ऐब है। खैर पैंट शर्ट तो एक किसी कौम का कल्चर रहा नहीं है, वो तो दुनिया में कॉमन ड्रेस बन चुका है, लेकिन नॉर्मली हर इंसान जो उसका नजरिया हो जो उसका कॉन्सेप्ट हो आप उस पर कायम हो तो इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत होगी, अगर आप उस पर कायम नहीं है तो इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत नहीं होगी। मैं अजान वाला वाकया कंप्लीट करूं फिर इसी पर एक और वाकया सुनाता हूं। वाकयात इसलिए सुनाए जाते हैं कि इससे जो दावा है ना वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाता है। तो मैंने अजान देते हुए मुझे आ रही थी शर्म, फजर का टाइम हो गया ट्रेन में, मैंने कहा लोग बोलेंगे अबे तो पूरा ही मुल्ला निकला, हम कॉलेज का दौर था हमारा ग्यारहवीं में या मैट्रिक में था मैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार देखो अगर नमाज गलत है तो फिर अजान भी गलत है, अगर नमाज सही है तो फिर अजान भी क्या है, बोलो वो भी सही। मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए पता है क्या किया, मैंने कहा शर्म इनको आनी चाहिए, जिस खुदा ने पैदा किया उसने सिर्फ 5 नमाजें फर्ज की हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मुस्टंडे बने हुए सो रहे हैं। मैंने ऐसे ही कहा, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बार बार दूसरे को गालियां देनी पड़ती है मजबूरी में, मैंने कही ये मुस्टंडे पड़े हुए सो रहे हैं, आज कोई हादसा हो जाए कैसी चीखें निकलेगी ना, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे, ट्रेन उलटने लगे फिर सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सब शुरू हो जाएंगे, सबको अल्लाह याद आएगा। और हमने जहाजों में देखा ही है, जहाजों में अक्सर ज्यादातर लिबरल सेकुलर तबका ही ज्यादा सफर कर रहा होता है, गरीब लोग तो ट्रेनों में जा रहे होते हैं और गुर्बत दीनदारों में गुर्बत ज्यादा है। तो हमने देखा है जरा सा जहाज जायमा हिला ना मौसम की खराबी से थोड़ा ज्यादा हिल गया तो लोगों के ला इलाहा इल्लल्लाह निकल, सारे मुल्ला बन जाते हैं उस वक्त, औरतें दुपट्टा ले लेती हैं और मन्नतें मानना शुरू कर देती हैं, हज करूंगी उमरा करूंगी ये करूंगी वो करूंगी। मैंने कहा यार अल्लाह के हाथ में ये ट्रेन है, ये ट्रैक से उतर गई, क्या इंसान की दो टके की औकात नहीं है यार, सब अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएंगे, और शर्म इनको आनी चाहिए मुस्टंडो, ऐसे पड़े हुए थे ना सो रहे थे सारे। मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उनकी तरफ मैंने कहा यार ये देखो रात इन्होंने खाना खाया है, मा कान लकुम अन तुंबितु शजरह, कुरान कहता है तुम्हारे बस में नहीं है कि इन दरख्तों को तुम अपने हाथों से बना लेते, एक रोटी भी इंसान खुद से नहीं बना सकता, बीज के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, बीज जमीन में डालो गंदुम के हजारों बीज निकल आते हैं, ये सॉफ्टवेयर बीज के अंदर किसी साइंटिस्ट ने डाले हैं, अल्लाह ने डाले हैं, सिनवानु वगैरु सिनवानिन युस्का बिमाइन वाहिद, एक पानी से सैराब किया जाता है, उसी पानी से अनार भी निकल रहा है, उसी से अंगूर भी निकल रहा है, उसी से खजूर भी निकल रहा है, उसी से सूखा चारा भी पैदा हो रहा है जो जानवरों के पेट में जाके दूध की शक्ल में तब्दील, इतनी नेमतें खा पी के डकार मार के मुस्टंडों की तरह पड़े हुए हैं, कोई होश नहीं, अल्लाह क्या कह रहा है अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है। मैंने कहा शर्म इन मुस्टंडों को आनी चाहिए, तो मैंने कहा हमें क्यों शर्म आए भाई, तो मैंने खड़े हो गए अजान दी, मैंने कहा अजान तो मुझे वो अजान तो बहुत इंशाल्लाह उम्मीद है सवाब मिला होगा क्योंकि उसमें मुझे शर्म आ रही थी। हमारे बड़े भाई थे वो कुरान हिफ्ज़ करते थे मदरसे में ना, तो कारी साहब ने उनसे बोला कि मुअज्जिन आज छुट्टी पर है तुम जाके अजान दो। अब उनको भी मुल्ला बनते हुए क्या आ रही थी शर्म, वो तो मुझसे भी ज्यादा, उनका हमारे खानदान वालों ने नाम रखा हुआ था शहजादा सलीम, मुझसे जो बड़े भाई से जो छोटे भाई है ना वो बड़े हैंडसम बड़े खूबसूरत से थे, वो बड़े खूबसूरत बाल उनके बीच की मांग और बड़े स्टाइल उनके, अभी वो बयान सुन के फिर ऐसा नाराज हूं, तो वो थोड़े और ज्यादा इन चीजों में थे ना, तो उनको उनके उस्ताद ने बोला जाओ अजान दो, वो जा नहीं रहे। मैं बोला क्यों नहीं जा रहे, कहने यार कहते मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने कहा जाओ किसी बेशरम को लेकर आओ फिर। कारी साहब ने बोला तुम्हें शर्म आ रही है तो किसको लेकर आओ, किसी बेशरम को ले आओ। तो उनको खैर समझ में आ गया। तो इंसान को ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, शर्म इनको आनी चाहिए। तो अल्लाहू अकबर का नाम लेते हुए क्यों शर्म है। उसके बाद से कभी सफर में हो तो फिर मेरी मुझे वो वाकया लाजमी याद आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को शख्स पे बहुत प्यार आता है, बहुत फखर करते हैं अल्लाह ताला जो जंगल में हो, नमाज का टाइम हो, अजान कहे और नमाज, हालांकि कोई जमात में उसके साथ शरीक होने वाला नहीं है लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है वो। तो इसलिए शायर इस्लाम का इजहार, लोगों को हज करते हुए भी शर्म आती है हराम में। बाज लोग ऐसे भी नालायक हैं, ऐसे भी नालायक लोग हैं। मैं चंद साल पहले हज पे गया तो एक आलिम ने वाकया सुनाया कि अमेरिका से एक फैमिली आई, मियां बीवी, बहुत ही ऐशो इशरत में पले हुए लोग थे। शौहर ने बीवी को किसी तरह समझा बुझा के चलो बेगम हज पे चलते हैं, हज पे चलते हैं, हज पे चलते हैं, ले आया वो। तो बेगम साहिबा का वहां के जब माहौल देखा, जाहिर है टेंशन वाला माहौल है, औरत पे पाबंदियां हैं कि चेहरे पे कपड़ा ना लगे, और शौहर भी वो दो कपड़ों में, वो बड़े बड़े ऑफिसर, हर तरह के लोग, बादशाह लोग भी वहां दो कपड़ों में होंगे भाई, एक नीचे लुंगी है ऊपर एक चादर है। तो पर्सनैलिटी तो कहां गई पर्सनैलिटी। तो मौलाना ने मुझे बताया कि हमारे ग्रुप में वो जोड़ा था, तो वो खातून इतना गुस्सा, एहराम में, हज के एहराम में आने के बाद तो आप निकल नहीं सकते ना, तो हज भी फर्ज हो गया आपके ऊपर, फिर अगर आप एहराम से निकलोगे तो दम भी वाजिब है। तो भाई अरफा के दिन थोड़ा सा क्याम कर लो ताकि आपका एक रुकन तो अदा हो जाए ना, बाकी चीजों की तलाफी कुर्बानी दम से हो जाएगी। ना ना ना, अरफा से एक दिन पहले भाग गई वो, और कहा मुझे रहना ही नहीं है एक सेकंड के, हालांकि मुसलमान थी, रहना ही नहीं है मुझे, माहौल ही मुझे पसंद नहीं है, मुल्लाओं का माहौल ना, मौलवियों का, बिल्कुल सारे वो अजीब सा एक गायर है, सारे दीवाने वार घूम रहे होते हैं, मस्तानों दीवानों की तरह घूम रहे होते हैं, कंकड़ियां मार रहे हैं और इधर से उधर जा रहे हैं, एक अजीब बदहाल। कितना भी वीआईपी हज हो ना, पांच दिन ठीक ठाक टेंशन मिलती है हज में। मैंने 2013 में बहुत वीआईपी हज किया था, बहुत वीआईपी हज, उसके बाद भी अल्लाह ने करवाया मुझे। तो उस वक्त अंदाजा हो गया कि जितना भी वीआईपी हज हो, जितना भी महंगा हज हो, पांच दिन हज में टेंशन ही टेंशन। पांच दिन तक तो वो जो मीना के अय्याम और रमी वगैरह के जो अय्याम है वो बहुत सख्त टेंशन के अय्याम है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्राउड को वीआईपी की, या तो हेलीकॉप्टर में हो जाए हज, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हेलीकॉप्टर में ही अरफात का वकूफ हो, वहीं घूमता रहे हेलीकॉप्टर, तो इसके अलावा हो नहीं सकता। तो जिनको जो नाक पे मक्खी बिठाने वाले लोग हैं वो कहते हैं हमसे नहीं होगा, हमने अपने बुजुर्गों को देखा है जिनके साथ हमने हज किया, हालांकि वो मालदार हैं, अल्लाह ने उनको माली गुंजाइश भी दी, लेकिन हज में अपने आप को बिल्कुल मिटा देते हैं। अराफात के दिन जिनमें तकब्बुर होता है वो क्या करते हैं, बड़े नफीस स्टाइल में ना, चलो अब आ गए हज करने, खेमे में जाएंगे, इसी के अंदर पराठे खा रहे होंगे, पकोड़े खा रहे होंगे वहां बैठ के, ठीक है ना, ये भी गनीमत है, ना करने से अच्छा है चलो आपने वकूफ अरफा कर लिया। लेकिन वकूफ अरफा की सुन्नत क्या है, अपने आप को जलील करना, अपने आप को मिटाना, हज नाम ही इसी चीज का है। तो अल्लाह, जो अल्लाह वाले लोग हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को रख के आते हैं कि यहां दीवानों की तरह हज करना है, तो वो क्या करते हैं, अरफात के दिन हमने उनको देखा है कि अपनी नाक मिट्टी में रगड़ रहे होते हैं, वो दुआएं मांगते हुए सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं मैदान में, मिट्टी में और धूप में अपनी नाक मिट्टी में रगड़ रहे होते हैं। तो अपनी अल्लाह के सामने जो है ना, अपनी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, ये सब चीजें कहां रख देनी चाहिए, हाँ ये ससुराल में चलती है, ससुराल में जब जाओ तो डुबो के मत खाओ, ससुराल में जब जाओ तो चीनी कम डालो, क्योंकि गरीब लोग चीनी भर भर के चम्मच डाल डाल के पीते हैं, मालदारों को सबको शुगर होती है, अगर आपको शुगर नहीं है इसका मतलब आप गरीब आदमी हो, कुछ बीमारियां मालदारों की होती हैं, आपको हर मालदार की जेब में कुछ टेबलेट होती है, ये सुबह ये पैनाडोल तो ऐसे होते हैं उनके यहां जैसे कोई मसला ही नहीं है ना। तो तो ससुराल में आप अपना एटीट्यूड दिखाओ जाके, सब शोबाजियां दिखाओ अल्लाह के सामने। जब अल्लाह का हुक्म है तो भाई सबसे पहले कौन है? अल्लाह है। परवाही ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना परागंदा हाल होगा ना अल्लाह को वो हाजी उतना ज्यादा महबूब होगा। जितने बाल बिखरे हुए, क्योंकि हज में कंघी नहीं कर सकते आप। एक सहाबी की हालत ये हो गई थी कि सर में जुए, अब तो हज चार पांच दिन का होता है ना, पहले जब मदीना से निकले हज के लिए तो एहराम में एक महीना तो फिर रास्ते का सफर, धूल मिट्टी। तो एक सहाबी की हालत ये हो गई थी कि सर में जुएं इतनी पड़ गई थी उनके कि नीचे जुएं गिर रही थी टक टक करके उनके सर। ये हालात हो जाया करते थे। अब तो इतनी पर्सनैलिटी और वीआईपी किस्म के हज हैं, उसमें भी लोग नाक में मक्खी बिठा के एक्चुअली ये क्या है, ये ऐसे पड़े हुए हैं हम, ये क्यों है। तो है ये ना, नखरे वाले आदमी का काम बैतुल्ला की जियारत है ही नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब इंसान अल्लाह के दीन की तरफ आए ना तो दीन की मिठास वही चखेगा जो किश्तियां जला के आए। अलबत्ता इसमें एक चीज नोट करने की है कि आदमी अपना हुलिया ऐसा ना बनाए जो उजूबा बन जाए, ये ठीक नहीं है। बाज लोग यूनिवर्सिटियों में, बाज मैंने तलबा को देखा है, दीन की मेहनत की दावत दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी ड्रेसिंग उनकी ऐसी है, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनी हुई हैं उन्होंने और ऐसे चोगे जुब्बे शामियाने। कॉलेज के कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात हुई चंद साल पहले, मेडिकल कॉलेज में वो दीन की दावत का बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लड़कों को, लिबरल सेकुलर लड़कों को दीन की तरफ ला रहे थे। तो रात को मेरी उनसे मुलाकात थी, उनके प्रोफेसर साहब भी मौजूद थे, वो लड़के भी मौजूद थे। मैंने उन लड़कों का लिबास देखा, पूरा चार आदमी एक कमीज में बड़े आराम से आ सकते थे। बाज लोग पहनते ना बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे, अजीब सा एक, फिर पगड़ी भी माशाल्लाह उड़न तश्तरी लग रही थी मुझे, वो नहीं होती जो खलाई हमने देखी, इतना बड़ा पगड़ा। भाई होता था किसी जमाने में, लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां पहना करते थे, बड़े बड़े लिबास पहना करते थे। अब कल्चर नहीं है, आप क्यों नमूना क्यों बन रहे हो सोसाइटी में, अजीब सी चीज क्यों नजर आ रहे हो आप? आपने देखा होगा अभी भी कुछ लोग पीले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, होता है ना, वो तो खैर खास मजारों के लोग होते हैं, लेकिन नॉर्मल मैंने भी देखा है, समझदार आदमी होगा अजीब टाइप के कपड़े पहन रहा होगा। तो मैंने उनको, उन्होंने कहा कोई नसीहत करें हमें, उनका ख्याल था मैं उनको बोलूंगा नमाज पढ़ो रोजा रखो, वो तो बेचारे पहले ही पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे कहा देखो आपकी जो ड्रेसिंग है ना, इस ड्रेसिंग से लोगों को होगी वहशत। लोगों को क्या होगी? वहशत, समझते हैं? नहीं, लोगों को ये डर होगा कि हमने अगर इनकी दावत को कबूल किया, दीन पे चले, तो हम भी क्या बन जाएंगे? इस टाइप के। और मैंने कहा ये वाली टाइप जो है ना ये सोसाइटी में, उन्होंने कहा ये सुन्नत लिबास है। मैंने कहा लिबास में कोई सुन्नत नहीं है, खूब समझ लो। देखो इस्लाम चूंकि कयामत तक के लिए आया है ना, अगर वो एक ड्रेस फिक्स कर देता तो वो ड्रेस हर कौम में फिर सूटेबल, हर कौम के लिए सूटेबल थोड़ी होता। हमारे नबी अगर शलवार कमीज को कर देते कि ये मेरी सुन्नत है, नॉर्वे वाले पहन लेते शलवार कमीज -20 और -30 में, है भाई? दफ्तरों का ड्रेस अलग होता है, लड़ने वाले फौजियों का ड्रेस अलग होता है, मजदूरों का ड्रेस अलग होता है, दूल्हे का ड्रेस अलग होता है। तो इस्लाम ने बिला वजह की पाबंदियों में जकड़ा ही नहीं है, खाम। इस्लाम तो अखलाकियात सिखाता है भाई, चोरी गलत है, ये गलत है। तो ड्रेस के बारे में चंद हिदायत दी है जिनका अखलाकियात से ताल्लुक है। नंबर एक, प्रॉपर ड्रेस हो, समझ रहे हैं, अधूरा ना हो कि जिस्म ही नजर आ रहा है उसमें, जैसे कोई खातून बारीक लिबास पहनती है पूरी खाल नजर आ रही है उसमें, या उसके पिंडलियां खुली हुई हैं, उसके स्लीवलेस कपड़े पहनी हुई है, ये क्या है, नाजायज है भाई? इसलिए कि ड्रेस थोड़ी है ये तो दो चार स्टीकर हैं आपने लगा लिए। खवातीन के लिबास में पैसा बहुत लगता है, लिबास नहीं लगता। यानी खवातीन के कपड़ों में आजकल कपड़ा नहीं लग रहा, पैसा बहुत लग रहा है। हालांकि पैसे से ज्यादा कपड़ों में कपड़ा लगना चाहिए ना, क्या कह ले भाई, कपड़ों में कपड़ा लग नहीं रहा, पैसा लग रहा है। यानी दो चार चीथड़े रह गए लेकिन महंगे इतने होंगे वो। तो शरीयत ने फोकस किया है भाई लिबास पूरा होना चाहिए, एक बात। नंबर दो, इतना चुस्त नहीं होना चाहिए कि आपके जिस्म के सतर जो है आपकी शर्मगाह नुमाया होना शुरू हो जाए, उससे लिबास का मकसद फौत हो जाता है। तो गोरे तो इन चीजों का ख्याल नहीं करते। दो चार हिदायत दे दी है शरीयत ने, औरत को हुक्म दिया कि उसका घर से जब बाहर निकलेगी तो पूरा जिस्म छुपाएगी वो। बाकी शरीयत ने इसको किस पे छोड़ दिया? कल्चर पे। तो मैंने उनसे कहा कि अब हमारे कल्चर में ऐसी ड्रेसिंग नहीं है। तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है, यानी मैं अगर दीन पर आ गया तो मुझे भी इतनी बड़ी पगड़ी पहननी पड़ेगी, तो आप क्यों उजूबे से लग रहे हो? जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब जैसे रह रहे हैं तो आप सोसाइटी में उसी का एक फर्द बन के दीन की दावत दो ना। खुलासा ये कि नमूने मत बनो, लोग देख के क्या समझे। नमूने से मुझे वो वाक्य लाजमी याद आता है, साफ बार बार जो है ना वो कि खवातीन को पढ़ाओ उनकी शादी मत करो, पढ़ाओ पढ़ाई को फोकस करो। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कहता हूं कि जब कोई आपके सामने कहा करे ना कि लड़कियों को पढ़ाओ शादी मत करो, हम कहते हैं शादी भी करो पढ़ाओ भी, दोनों काम करो ना, शादी को पढ़ाई में रुकावट ना समझो, शादी करके भी पढ़ ले वो, लेकिन डिले मत करो उनकी शादी को पढ़ाई की वजह से। तो जब भी कोई आपके सामने कहा करे ना ऐसी बात कि पढ़ाई को फोकस करो शादी को फोकस ना करो, तो उनसे कहे कि काश आपकी अम्मा भी पढ़ाई को फोकस करती शादी को फोकस ना करती तो आप जैसे नमूने पैदा ना होते। आपकी अम्मा को भी चाहिए था कि पढ़ती ही रहती, बहुत बड़ी स्कॉलर बन जाती, कम अज कम आप जैसे नमूने मार्केट में नहीं आते। तो यार ये फेसबुक की दुनिया भी, यूट्यूब पे कमेंट्स की दुनिया भी बड़ी अजीब है। कुछ लोग ना बहुत ही उल्टे उल्टे क्लिप ला रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं ना, तो नीचे लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया हुआ होता है। तो एक कमेंट्स आजकल बहुत चल रहा होता है, पता नहीं खास आईडी से वो कमेंट्स जाता है, उसमें ये लिखा होता है कि इस किस्म की लोग सदियों में पैदा होते हैं, इस किस्म के लोग। अब पहले जुमले से तो लगेगा यार कोई अजीम इंसान है ये, कहते हैं इस किस्म के लोग सदियों में पैदा होते हैं क्योंकि अक्सर माएं ऐसे बच्चों को पैदा होने से पहले ही जाया करा देती हैं। जब माओं को पता चलता है ना कि इस तरह की चीज मार्केट में आने वाली है, वो पैदा होने से पहले जाया करा देती हैं, इसलिए इस किस्म के लोग सदियों में पैदा होते हैं। तो कुछ नमूने हैं ना YouTube पे भी, कुछ ऊट पटांग फेंक रहे होते हैं। तो यार ये पाकिस्तानी कौम का दिमाग, मैं कहता हूं इतनी टेंशनों में जिनका दिमाग काम कर रहा हो, अगर हम अमेरिका और कनाडा की तरह टेंशन फ्री होते तो हम कहां पहुंच चुके होते। चांद पे पहुंचना तो दूर की बात, हम चांद को जमीन पे उतार के लाए हुए होते, बोले चांद आएगा इधर। अच्छा खैर, क्या कह रहा था यार मैं, एक तो बताएं मैं। हाँ तो वो इतनी बड़ी पगड़ी, वो खैर उन्होंने मेरी बात से नाराज हो गए, मैं अगर मेरा बयान दोबारा सुने तो मैं उनसे दोबारा सॉरी कर लेता हूँ। वो नाराज हो गए, नहीं ये नहीं फलाना डिमकाना ये क्या, हम तो अपने लिबास को प्रमोट करेंगे। मैंने कहा भाई क्यों लिबास को, इतना ज्यादा लिबास को फोकस क्यों कर रहे हो? तो बहुत ज्यादा है बात, शलवार कमीज पहन लो आप, थोड़ा सा अच्छे स्टाइल की शलवार कमीज हो, थोड़ा वेस्ट कोट हो, पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहते तो। अब डॉक्टर जाकिर नाइक पैंट शर्ट पहन के आते हैं ना, मेरी उनसे जब भी दो तीन चार अच्छी मुलाकातें हुई हैं, वो कहने लगे भाई वैसे उनकी ड्रेसिंग शलवार कमीज है, कहते हैं मैं जिस तबके में काम करता हूं वो सारा पैंट शर्ट वाला तबका है, तो उसमें मैं पैंट शर्ट में जाऊंगा तो उनको लगेगा कि हमारे करीब है ये। बहुत मुझे अच्छी लगी उनकी, वरना नॉर्मली डॉक्टर साहब की जो ड्रेसिंग है वो और किसी मौलवी साहब की ड्रेसिंग में कोई फर्क है नहीं। मैं मलेशिया में उनके घर भी गया हूं, तो यहां तक पिंडली तक आधी पिंडली तक उनकी शलवार और वो बगैर बनियान वाला सफेद कुर्ता नहीं, जो सिर्फ आप जुम्मे के दिन पहन के आते हो, पहले दिन शरीफ लग रहे होते हो कि यार कोई इंसान का बच्चा आया है। जुम्मे के दिन नहीं कुर्ता, बगैर कुर्ते के लोगों ने अक्सर जुम्मे के लिए रखे हुए होते हैं, ये ईद के लिए रखे हुए होते हैं, अब तो वो भी गए। तो मैं शलवार कमीज ही को ज्यादा बेहतर समझता हूं, ये मेरी जाती राय है, किसी को इससे इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल तो यूनिवर्सिटियों में काम करने के लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसा ड्रेस ना पहने कि वो आपको क्या समझें, वही ये कोई अलग ही चीज आ गई मार्केट से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जिस चीज पे शरीयत ने ऑर्डर दिया है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना, दाढ़ी रखना शरीयत का हुक्म है। अब आप ये नहीं हो सकता कि शेव करना शुरू कर दें दीन की तबलीग के लिए ताकि मैं बिल्कुल इन जैसा नजर आऊं, ना भाई, यहां किसकी हिदायत है? इस्लाम की हिदायत है, दाढ़ी रखनी पड़ेगी आपको, इस्लाम के जो अहकाम है उन पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ने से मुल्ला लग रहे हैं तो आपने उनको दीन के करीब करने के लिए नमाज ही छोड़ दी, तो ये थोड़ी जायज है भाई, फिर करीब किसके करोगे? दीन को दाव पे लगा के थोड़ी दीन की तबलीग की जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई ऐसा रवैया उनके साथ रखना जिससे आप नमूने लगो उनकी नजर में। इतनी बड़ी पगड़ी, ठीक है एक जमाने में मुसलमानों में रिवाज था, जितनी बड़ी ज्यादा पगड़ी होती थी ना उतना ज्यादा कोई सरदार समझा जाता था, और सरदारों में अब रिवाज है भी तो जहां है वहां पहने। हम बड़ी पगड़ी के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं जहां रिवाज है, जैसे बलोचों में बात सिंधी पंजाब के इलाकों में बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते हैं, वहां रिवाज है, वहां बुरा भी नहीं लगता, बल्कि वो जितनी बड़ी पगड़ी होगी लगेगा उतना बड़ा सरदार है। तो शरीयत में कल्चर की बिला वजह की मुखालफत का हुक्म नहीं है, कल्चर ही को फॉलो करना चाहिए जब तक वो कल्चर शरीयत के खिलाफ नहीं है। लोग हर चीज में कल्चर के अगेंस्ट चलते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। जब तक वो कल्चर शरीयत के अगेंस्ट नहीं है तो आप कल्चर को फॉलो करो, बिला वजह खाम खामे नमूने बनने की कोशिश, क्योंकि कल्चर पे नहीं चलोगे तो नमूने नजर आओगे ना आप, अलग ही कोई चीज। एक और यूनिवर्सिटी का मुझे वाकया याद आया, नाम यूनिवर्सिटी का मैं नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो लोग समझ जाएंगे हमारी बात हो रही है। वहां भी कुछ नेक परहेजगार लड़के गए, बहुत ही लिबरल यूनिवर्सिटी है वो, बहुत बेहयाई है उसमें, बहुत ही हाई यानी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हाई लेवल की। लड़कों ने वहां काम करना शुरू किया, दीन की दावत, बहुत तेजी से लड़के दीन पर आना शुरू हो गए। अब जो जो लड़का दीन पर आता उसे वही वाली पगड़ी, वही वाला चोगा जो उन्होंने पहना होता ना, उसी किस्म की ड्रेसिंग। अच्छा, अल्लाह ने बरकत इतनी दी ना काम में, उन्होंने जब दावत देना शुरू की लड़कों को, किसी बुजुर्ग से बैठ भी थे वो, तो क्या हुआ, वो सारा उनका नेटवर्क बढ़ना शुरू। तो अब जब यूनिवर्सिटी ने देखा कि यार कुछ लड़के बिल्कुल ही अलग ड्रेस में और अलग थी उनकी लिबास, तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है दो धड़ों में तकसीम हो रही है, धड़ेबंदी हो रही है इसमें। भाई यूनिवर्सिटी को इससे क्या गरज के कोई दाढ़ी रखे नमाज पढ़े, उनको थोड़ी इससे। लेकिन जब सबकी ड्रेसिंग एक जैसी होना शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी ने उनको ठक सबको बाहर निकाल दिया, बोला इंसान के बच्चे बनो यूनिवर्सिटी के बकौल, वैसे तो बन नहीं रहे थे इंसान के बच्चे, निकलो यहां से, सब पाबंदी लगा दी। तो फिर जामतुर रशीद आए हमारे पास कि हम इतनी दीन की दावत का काम कर रहे थे और ये देखिए कैसी लिबरल यूनिवर्सिटी है, सबको ठड्डे मार के बाहर निकाल दिया। हमारे उस्ताद ने बोला तुम भी तो क्या कर रहे थे, यूनिफॉर्म क्यों बनाया हुआ तुमने, दीन में यूनिफॉर्म है कि इस कलर की पगड़ी, इस कलर के कपड़े? फौजियों का यूनिफॉर्म होता है, पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, मजहब का कोई यूनिफॉर्म थोड़ी होता है भाई। भाई जो पहन रहे हैं वही पहनने दो यार, उनको वो थोड़ी बहुत हिदायत दे दो यार, ये कुछ ज्यादा पैंट पतली हो गई है, थोड़ा सा इसको क्या कर लो, थोड़ी सी इसको ढीली कर लो, दो चार हिदायत हैं। तो इतना आपने भी तो एक पूरा धड़ेबंदी का माहौल बना दिया था, लग रहा था कि नया फिरका वजूद में आ रहा है। तो बार दफा हम खुद गलतियां करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। तो इसी तरह मैं उन लड़कों को भी कहता हूं जो दीन पर आते हैं, अपने खानदान में दीन पे मजबूती से चलो, नमूने बोलो मत बनो। लोग ये ना बोले हमारे खानदान में एक नमूना पैदा हो गया है, ऐसी ऐसी हरकत, ये सब चीजें भुगते हुए हैं हमारे खानदान में, खानदान में तो नहीं, खानदान से बाहर कोई रिलेटिव थे उनमें एक नमूना पैदा हुआ था। तो ये जब चीजें जो शरीयत के जो मकासद हैं उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक साहब ने चिकन खाना छोड़ दी कि हमारे नबी ने पता नहीं ये वाली चिकन नहीं खाई तो देसी चिकन, भाई तुम वैसे ही छोड़ दो, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया, मजहब का लेबल लगा के चिकन मत छोड़ो। अच्छा, मजहब में ये चीज भी है कि पोलियो के खतरे पिलाते हैं, तो ये मजहबी आदमी नहीं है, पोलियो के खतरे नहीं पिलाता तो दीन पर क्या है, पक्का और मजबूत है। भाई इसका मजहब से कोई ताल्लुक बोलो नहीं है। जिन चीजों का मेडिकल साइंस में मजहब से ताल्लुक है उनको तो फोकस कर नहीं रहे। मोटापे को हमारे नबी ने नापसंद किया, एक मोटापा कुदरती तौर पर होता है, नेचुरल है, कुदरत की तरफ से। बड़े बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा बहुत वजन है, हालांकि खाते सिर्फ एक टाइम है, बाद सहाबा बहुत भारी जिस्म के थे, वो तो एक अलग चीज है। खा खा के जो मोटापा पैदा हो, तीजा कभी खा गया, चालीसवें के भी बिरयानियां फोड़ दी, मुहर्रम के हलीम फोड़ दिए, फिर अल्लाह भला करे कूंडे फोड़ दिए, फिर अब्बा के इंतकाल पे स्वयं फोड़ दिया, किसी के अब्बा के, अपने अब्बा के इंतकाल पे तो नहीं फोड़ते, दूसरों के अब्बा के इंतकाल पे क्या फोड़ दिया, स्वयं फोड़ दिया, फिर शबे बरात का हलवा फोड़ दिया, और अल्लाह भला करे ग्यारहवीं शरीफ फोड़ दी, ईद मिलादुन नबी पे जर्दे की देख फोड़ दी, फोड़ फोड़ के हमारे तोंदे क्या हो गई, निकल गई। सिर्फ तोंद का तस्करा कर रहा हूं, बाकी भी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन फिलहाल फोकस मैं किसको कर रहा हूं, तोंद को। ये वाली तोंद इस्लाम में हराम है, इतनी शदीद वईदें हैं ना इस पर, आप हदीस उठा के देखो। एक कुदरत की तरफ से पेट निकलता है, जिन लोगों को कब्ज हो, पेट खराब हो, होता है, हमने बड़े बुजुर्गों को देखा है, एक टाइम खाते हैं बहुत थोड़ा, लेकिन वजन बहुत ज्यादा है भाई। वो तो अल्लाह की बनाई हुई बॉडी है ना। मैं इसलिए बार बार ये वजाहत करता हूं कि किसी भारी जिस्म वाले को देखकर बदगुमान होने की इजाजत नहीं है, किसी बढ़े हुए पेट वाले को देखकर बदगुमान होने की इजाजत नहीं है। ये कुदरत की तरफ से भी होते हैं कुछ चीजें, और कुछ ऐसे फोड़ते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता उनका। तो लेकिन खा खा के अगर वजन बढ़ गया तो ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। और मैंने बहुत सारे मजहबी लोगों को जो अल्लाह रसूल के आशिक कहलाते हैं, कहते भी हैं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की बात नहीं है, सब जगह होते हैं ऐसे लोग, अल्लाह रसूल के आशिक है, लेकिन जब फोड़ने पे बैठते हैं ना, आदमी कहता है ये अल्लाह रसूल का आशिक नहीं हो सकता, ये देगों का आशिक है। ये जो अल्लाह रसूल का आशिक होगा ना, वो फोड़ेगा नहीं कभी भी, वो खाएगा बस खाली। हमारे नबी की खुराक तो देखो कितनी कम थी, सहाबा की खुराक, इस्लाम में तो रोजे हैं भाई, अल्लाह और नबी का आशिक रोजे रखता है, हर वक्त खाता नहीं रहता वो। हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए। फिराके यार गाड़ी उर्दू है ना, यार की जुदाई, महबूब की जुदाई। तो जुदाई में इंसान मोटा होता है, दुबला होता है, दुबला होता है ना गम में। तो शायर कह रहे हैं आज के आशिक अजीब हैं, अल्लाह रसूल के आशिक हैं, लेकिन यार की जुदाई में ये घुल घुल के हाथी हो रहे हैं। तो हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए, इतने घुले, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए, यानी रुस्तम पहलवान नजर आने लगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस से फरमाया, इस उम्मत में जो सबसे पहली खराबी आएगी ना, वो मोटापा आएगा। बुखारी की हदीस है, सबसे पहली खराबी झूठ और मोटापा, खाएंगे पर फोड़ना फोड़ना से। और कमाल है कि तुम खाओ यार, मना किसने किया तुम्हें, अपने खर्चे पे खा रहे हो, मजहब का लेबल तो ना लगाओ ना उससे, मजहब का लेबल लगा के खा रहे हो, आज बिरयानी है, आज फलानी है, आज ग्यारहवीं का खाना है, जिमखाने का खाना है, खिलाना सुन्नत है भाई, खाना नहीं है कहीं भी, गरीबों को खिलाओ यार जाके। खाने में तो रोजे है, अपने लिए रोजे, नबी ने अपने लिए रोजे पसंद के लिए, दूसरों के लिए सदके पसंद किए, सदका दिया करते थे आप, तो अपने लिए तो नबी ने रोजा पसंद किया है, तो हमें भी अपने लिए रोजा रखना है, दूसरों को खिलाने वाले को नहीं सुनाना कि आपने दावत की, गरीब को बिठाया, कम खाना सुन्नत है, वहां ये मौका नहीं है, समझ रहे हो। सखावत का तकाजा ये है कि वहां बोलो खाओ। मैं सईद अनवर का जिक्र करता हूं ना, बहुत नेक आदमी, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे। हम हज में खाने से पहले ये थोड़ी बताया जाएगा कि कम खाना सुन्नत है, वहां तो सखावत का तकाजा है भाई खाओ यार। हाँ अभी कोई खाने की महफिल नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि कम खाना सुन्नत है, ज्यादा खाना सुन्नत नहीं है, लेकिन जब मैं दावत करूंगा तो फिर सखावत का तकाजा है, शरीयत का हुक्म है, लोगों को खाने की तरकीब दो भाई, खाओ लंगर है। क्योंकि अगर मैं वहां तरकीब दू कि ये मैंने आप लोग के लिए खाने का इंतजाम किया, लेकिन याद रखना कम खाना क्या है, लोग कहेंगे यार ये दावत के तकल्लुफ की आपको जरूरत, ये फिर कंजूसी कहलाएगी। वो भाई सईद अनवर, बड़े अल्लाह उनको इज्जत दे, हम हज पे थे तो भाई सईद अनवर का बयान था, मैं सामने बैठा हुआ था, बड़ा अच्छा बयान कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। बयान के आखिर में उन्होंने कम खाने के फजाइल सुनाए, कम खाओ, इतना कम कर दिया कि इतना मैं भी नहीं करता कम ना, बहुत ज्यादा कम कर दिया, कम खाओ कम खाओ कम खाओ, बहुत उन्होंने कम खाओ कम, वो नाराज नहीं होते उनसे बेतकल्लुफी है, खुशी होंगे ये बात सुनकर, कम खाओ, इतना कम कर दिया ना उन्होंने। अब जैसे ही बयान खत्म हुआ खाना लग गया, मैं बैठा हुआ हूं ना ऐसे करके, भूख भी लग रही है टाइट वाली, हजम में तो आपको पता है भूख लगती है, तो लोग मुझे कह रहे हैं खाए ना, मैंने मजाक किया, मैंने कहा सईद भाई ने खाने के काबिल छोड़ा था यार, मैंने कहा इस काबिल छोड़ा ही नहीं है, क्या मैंने कहा सईद भाई ये बयान खाने के बाद करने का था, खाने से पहले करने का, मैंने कहा क्या खाएं यार, खाएंगे लोग देखेंगे, मौली साहब खुद अमल नहीं कर रहे, अभी सईद भाई ने इतना लंबा बयान किया। तो हर चीज का एक मौका होता है ना, खिलाने में तो यही है भाई, खिलाओ खिलाओ खाओ आप लोग। हम सईद भाई को पता नहीं था बयान के फौरन बाद खाना है, शायद वरना इतना लंबा बयान ना करते वो। तो मैं याद कर रहा था, जो चीजें फोकस करने की हैं, शरीयत में पर्सनैलिटी की बड़ी वैल्यू है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मुल्क में किसी को सफीर बना के भेजते तो सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी वाले सहाबी का इंतखाब करते, सबसे बेहतरीन, ताकि जब दूसरे मुल्क में जाएं तो इनकी पर्सनैलिटी का असर हो। बादशाह देखे भाई कोई बंदा आया है बात करने के लिए, सफीरों में उसकी पर्सनैलिटी भी देखो, आर्मी में जो कमीशन ऑफिसर जिसको भर्ती किया जाता है ना, उसकी पर्सनैलिटी को बड़ा जज किया जाता है, क्योंकि इज्जत में इन चीजों का बड़ा दखल होता है। नेचुरली इंसान उसकी इज्जत करता है जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, इंसान की फितरत है, ये कोई गलत चीज नहीं है। तो हमारे नबी ये भी देखते थे कि आवाज अच्छी है, बलागत है, उनको बाहर मुल्कों में भेजते थे। आपने कमांडर बनाने के लिए क्राइटेरिया कुछ और था, सफीर बनाने का क्राइटेरिया कुछ और था, मुबल्लिग का क्राइटेरिया कुछ और था। हर चीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर और इलाके का होल्ड किसके हवाले करना है उसका क्राइटेरिया कुछ और था। अजान किसने देनी है उसका क्राइटेरिया, अजान बिलाल से दिलवाई है रजी अल्लाह अन्हु, आवाज ऊंची है, अजान उनसे दिलवाई है। इमाम बनाया उबई इब्न काब को, किरात में आवाज उनकी अच्छी थी, सही है ना। हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु बहुत खूबसूरत, तभी हजरत उमर ने तरावी उन्हीं से पढ़ाई ना। तो हर चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के लिहाज से, ऐसे नहीं है, हम तो समझते हैं कि बस इस्लाम में भेड़ चाल है, बस अल्लाह से सब कुछ होता है। भाई अल्लाह से सब कुछ होता है, लेकिन पहले आपको वो करना पड़ेगा जो आपसे होता है, फिर जो आपसे नहीं होगा वो कौन करेगा। शुरू से ही अल्लाह से ही होता है, तो फिर इसका मतलब आप बैठे हुए हाथ पे हाथ रखे, आपने कुछ भी नहीं करना, ये तो ऐसे ही हो गया। आपको औलाद चाहिए भाई, शादी कर ले भाई, अल्लाह से होता है सब कुछ। अल्लाह ने हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दिया, तो मेरे बच्चे को बगैर माँ के पैदा कर देगा। तो भाई वो एक ही दफा हुआ है, वो मौजदा था, बार बार ऐसा नहीं होगा। आप शादी करोगे, मियां बीवी का रिलेशन होगा, उसके बाद दुआ मांगी जाएगी, ए अल्लाह तू मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे। तो कहां से कहां बात चले गई, बहुत ज्यादा दाएं बाएं हम चले गए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का भी ख्याल किया है। हम खाने, लोग अक्सर कहते हैं ना भाई दाढ़ी कितनी सुन्नत है, दाढ़ी का साइज कितना सुन्नत, कम से कम एक मुट्ठी होना जरूरी है ना। तो पेट का भी एक शरीयत में साइज है, उससे ज्यादा बढ़ना इस्लाम में क्या है। अगर खाने की वजह से, नेचुरली एक अलग बात है, खाने की वजह से अगर वो साइज बढ़ रहा है तो वो भी सुन्नत के खिलाफ है। तो इस्लाम ने जिन चीजों में हमें हिदायत दी है उनको तो हम फॉलो करते नहीं, जिन चीजों में हमें इस्लाम ने आजाद छोड़ा है, लिबास के मामले में आजाद छोड़ा है, जबान के मामले में आजाद छोड़ा है। देखो इस्लाम ने अरबी सीखने को भी फर्ज करार नहीं दिया, हालांकि सारा इस्लाम किस जबान में है, अरबी में। तो अरबी को फर्ज ऐन नहीं करार दिया, फर्ज किफाया करार दे दिया कि भाई चंद लोग अरबी सीखेंगे, वो इल्म हासिल करेंगे, बाकी लोग उनसे दीन का इल्म सीखेंगे। तभी तो उलमा ने कुरान के उर्दू में, फारसी में, इंग्लिश में, सिंधी में तर्जुमे किए ना, ताकि जिनको अरबी नहीं आती उनको कुरान समझ में आए। लेकिन अरबी सीखना फर्ज ऐन नहीं करार दिया गया, इसलिए कि उम्मत हरज में मुब्तला हो जाती, भाई हर एक की अपनी जबान होती है। तो अल्लाह ने कहा जिसकी जो मदर लैंग्वेज है वो रखे, अगर वो नहीं छोड़ता कयामत में उसको कोई गुनाह नहीं होगा। हर कौम की अपनी जबान होती है, अगर तुम सिंधी बोलते हो बोलते रहो सारी जिंदगी, अल्लाह कयामत में ही नहीं पूछेगा तुम सिंधी तुमने छोड़ के अरबी पे क्यों नहीं आ गए, ठीक है ना। अगर तुम पंजाबी बोलते हो बोलते रहो सारी जिंदगी, कभी किसी आलिम ने कहा पंजाबी छोड़ के अरबी सीखना फर्ज है, कभी बोला। तो जब अरबी सीखना फर्ज नहीं है तो और कौन सी जबान सीखना फर्ज हो गया। तो अल्लाह ने सिंधी को बोला भाई तुम सिंधी बोलते हो, तुम्हारी ये अल्लाह की बनाई हुई जबान है, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, पश्तो, सरायकी, सही है भाई। हाँ सिंधियों में कुछ लोगों को अरबी सीखना पड़ेगी, पंजाबियों में कुछ लोगों को अरबी सीख के आलिम बनना पड़ेगा, आलिम बनना वो फर्ज किफाया है, चंद लोग सीखेंगे ताकि वो अपनी कौम में दीन की दावत और तबलीग का काम कर सकें, वो अरबी में इल्म हासिल करें, कुरान और सुन्नत को समझें, और फिर सिंधी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, उर्दू में उसके तर्जमे करके। अब हमने जितनी किताबें पढ़ी हैं अरबी में पढ़ी हैं, तो पहले हमने अरबी सीखी ना, तो अब मैं जो तकरीर कर रहा हूं वो अरबी में कर रहा हूं क्या, वो हम उर्दू में कर रहे हैं। तो हर जबान में चंद उलमा का होना जो अरबी सीखे वो फर्ज किफाया है, ताकि वो अपनी कौम में, उस जबान वालों में दीन की दावत का काम कर सकें, अल्लाह का पैगाम जो अरबी में नाजिल हुआ वो अपनी जबान में तर्जमा करके उनको बताएं। तो अल्लाह ने चंद लोगों पे तो वाजिब करार दिया, सब पे इसको वाजिब करार नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम किसी कल्चर के, किसी जबान के खिलाफ बोलो नहीं है। बल्कि आप हैरान होगे, बाज लोग जो कहते हैं ना इंग्लिश सीखना हराम है, अभी भी कुछ ऐसे ऐसे बाज लोग मौजूद हैं, आप हैरान होगे जब इस्लाम दुनिया में फैला है ना, तो ऐसा कहीं भी नहीं हो कि दूसरों को मजबूर किया हो कि आप हमारी जबान सीखो। بلکہ دوسری قوموں میں اتنا اسلام پھیلا کہ وہ زبانیں اسلام کی زبانیں بن گئی ہیں. آپ کو میں اردو کے بارے میں رپورٹ پیش کروں, یہ اوتھینٹک رپورٹ ہے. اردو ابھی مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے, حالانکہ اس کو پروموٹ انگریز نے کیا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی زبان فارسی, جو سرکاری زبان تھی نا, مسلمانوں کی علمی زبان, دفتری زبان, مسلمانوں کی حکومت تھی نا, تو کون سی زبان تھی؟ فارسی. انگریز جب آیا اس نے کہا ان کا فارسی سے رشتہ ختم کرو. اب اس کو پتا تھا ہم اتنی مائنورٹی میں ہیں کہ یہ پوری کروڑوں کی عوام انگلش میں نہیں آ سکتی, تو فارسی سے رشتہ ختم کرو. اردو اس وقت ترقی کر رہی تھی, اردو کو پروموٹ کرو تاکہ ان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے, کیونکہ اسلام کی بہت زیادہ تعلیمات فارسی زبان میں تھی. عربی کی بہت ساری کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے. جو بھی علم حاصل کرتا فارسی, آپ اپنے دادا اور پرداداؤں سے پوچھیں, پہلے جس کو فارسی نہیں آتی تھی پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. وہ انگریز نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے ختم ہو, اس نے فارسی کو ختم کر کے کس پہ سیٹ کیا؟ اردو پہ. اس زمانے کے آپ کو اردو کے جو بڑے بڑے شاعر ملیں گے اکثر پینے پلانے والے ملیں گے آپ کو, جو مذہب سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا, لبرل سیکولر. انگریز نے ان کو بڑی ترقی دی, مختلف خطابات سے نوازا کہ یار یہ فارسی ختم ہو تاکہ ان کا اسلامک لٹریچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو جائے. لیکن علماء نے وقت کی نزاکت کو سمجھا اور سارا لٹریچر کس میں شفٹ کر دیا؟ اردو میں. اب یہ تحقیق ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامک لٹریچر اردو میں ہے. اب اسلام کی عربی کے بعد سب سے بڑی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے. تبھی میں اردو کی حفاظت کا حکم دیتا ہوں. باہر ملکوں میں جاتا ہوں بولتا ہوں اردو سے رشتہ ختم نہ کرو, یا تو عربی سیکھ لو نا. اب عربی سیکھنا تو سب کے لیے ممکن نہیں ہے, تو مدر لینگویج اردو تو فری پھوکٹ میں ملی ہوئی ہے بھائی, اس کی حفاظت کرو. کیونکہ اردو کی حفاظت ہوگی تو بہت بڑے پیمانے پر اسلام کی حفاظت ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے اداروں میں اردو بھی سکھاتے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی, یہ تو ویسے ہی مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش گئے جب پاکستان ٹوٹا, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پاکستان سے الگ ہو گئے, لیکن دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ اردو سے رشتہ ختم کر دو, کیونکہ اردو اگر تم نے چھوڑ دی نا تو پھر اسلام کمزور پڑ جائے گا یہاں پہ. کیونکہ سارا لٹریچر, ساری علماء کی تقریریں, فتوے اور تحقیقات اور تفاصیر وہ کس زبان میں ہیں؟ وہ اردو میں آ چکی ہیں. تبھی بنگلہ دیش میں اب تک مدرسوں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. میں برما گیا, ان کی زبان برمی ہے, علماء کو اردو آتی ہے, عربی تو آتی ہے اردو بھی. میں نے کہا بھائی کہاں بھائی؟ تو مدرسے میں سیکھی ہے. امریکہ گیا, جو بچے وہیں پیدا ہوئے ان کو تو اردو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیکن مدرسے میں پڑھے ہوئے ان کو اردو آتی ہے. بہت سارے مدارس میں افریقہ میں کالے اردو بول رہے ہیں, میں نے ولاگ میں بھی لے کر آیا ہوں. میں بالکل کالے وہاں کے افریقن, ان کی زبان یا تو انگلش ہے یا کوئی اور زبان ہے, اردو پہ بول رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی تو نے اردو کہتے ہیں, ہم عالم بننے کے لیے ادھر مدرسے میں آئے تھے تو انہوں نے اردو بھی سکھا دی ہم کو. تو بہت سارے مدارس اس وقت اردو جو پروموٹ ہوئی ہے نا دنیا میں, تین چیزوں سے ہوئی ہے. نمبر ایک تبلیغی جماعت سے, پوری دنیا میں اردو کو پھیلا دیا. نمبر دو دینی مدارس, اور تیسری چیز اچھی نہیں ہے وہ ہے بالی ووڈ, سمجھ رہے ہو؟ ان کی فلموں نے اردو پوری دنیا میں پھیلا دی. وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہندی ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں وہ ہندی ہندی نہیں ہے. ہے کیا وہ؟ وہ نفرت سے انہوں نے اس کا نام ہندی رکھا ہوا ہے تاکہ اردو سمجھیں گے تو وہ پاکستانیوں کی حالت ہے. بھائی اردو تو انڈیا کی زبان ہے, اصل اردو کا جو مرکز ہے وہ کراچی تھوڑی ہے, اردو کا مرکز تو لکھنؤ ہے. تو انڈیا والوں کو تو اردو سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ یار ہمارے ملک سے پیدا ہوئی ہے یہ. لیکن وہ بس پاکستان سے دشمنی میں اپنی اولادوں سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو ان کو تو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے اردو کو کہ تمہاری تو فلمیں اردو میں ہیں بھائی, ورنہ کون دیکھے گا کون. تو لیکن اب جو بڑا کردار ہے نا تبلیغی جماعت کا اور دینی مدارس کا, میں بہت دنیا میں گیا ہوں, ہر جگہ اردو لازمی. وجہ اس کی وہ کہتے ہیں یار اردو سے رشتہ ہوگا تو ان کا علماء سے رشتہ ہوگا. عربی تو ہے ہی فرسٹ نمبر پہ, تو بہرحال عربی ہی ہے. تو عربی کے بعد سب سے بڑی زبان اردو ہے اہل اسلام کی, مسلمانوں کی, کیونکہ اردو بہت بڑی زبان ہے. اگر اردو اور ہندی کو الگ الگ نام نہ دیا جاتا نا, ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے, ڈرامے بازی کر کے اس کو خام خام الگ رکھا ہوا ہے, رسم الخط چینج کر کے, ورنہ وہ دونوں ایک ہی زبان ہے. تو اگر ان کو الگ الگ نام نہ دیا ہوتا نا, گورا بڑی شرارتیں کر کے گیا, توڑ تاڑ کے گیا طبیعت سے ہم لوگوں کو, ہندو مسلمانوں کو نا, اس نے زبان میں بھی توڑ دیا. تو अगर ये ना तोड़ता ना तो ये एक ही जबान, चाहे इसको हिंदी का नाम दे दो चाहे उर्दू का नाम दे दो, तो ये दुनिया की चाइना से बड़ी जबान हो जाती फिर ये, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों मुल्कों में उर्दू समझी जाती थी। तो आप बताओ इन तीनों मुल्कों की आबादी मिला के चाइना से ज्यादा है या नहीं है? तो इसको दो खासियतें, नंबर एक दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जबान होती, नंबर तीन चाइना बड़ी जबान तो है फैली भी नहीं है, सिर्फ चाइना में ही मिलेगी आप, जबकि उर्दू नॉर्वे में भी, अमरीका में भी, जापान में भी। भाई मैं हैरान होता हूं, दुनिया में किसी जंगल में भी चले जाओ वहां कोई इंडियन पाकिस्तानी मौजूद होगा उर्दू बोल रहा होगा, हरम में चले जाओ शुरते उर्दू बोल रहे होते हैं, दुबई में इतनी ज्यादा उर्दू स्पीकिंग गए हैं ना कि अब तो शुरते और अरबी भी बहुत सारे अल्फाज उर्दू के बोल रहे होते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत और इतनी फैली हुई जबान के साथ नफरत कैसी की है, वाट लगा के रख दी उसकी, दफ्तरों से निकाला उसको जबरदस्ती, अदालतों से निकाला उसको जबरदस्ती, अब थानों से भी निकाल रहे हैं, अब रिपोर्टें भी इंग्लिश में ही कटेंगी। तो बिल्कुल ऐसा सोतेलापन किया जो दुनिया में कोई कौम अपनी जबान के साथ ऐसा सोतेलापन, ये है गुलाम कौमों की गुलामाना सोच। ये खुदा की कसम अंग्रेज की ये जबान हुई है, जर्मनी वालों की होती ना वो जान देते थे इस जबान पे, इतने इतने से मुल्क यूरोप लेके बैठा हुआ है छोटी छोटी सी, वो अपनी जबानें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी जबान इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा में समझी जा रही है जो चाइना की आबादी से ज्यादा, पूरी दुनिया में फैली हुई जबान, और उसको पहले तो हमने हिंदी और उर्दू अलग अलग नाम देके डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हम उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं यूनिवर्सिटियों में उसके साथ, ऐसा सोतेलापन, तो दिल खून के आंसू होता है जब लोग आते हैं ना हमसे इंग्लिश जो रोमन में उर्दू लिखी हुई होती है, लगता है अलिफ बे ते से भी अब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक भूल रही है। कहता हूँ यार उर्दू तो उर्दू में लिख ले मेरे भाई, कहते हैं हमें आती नहीं है। अबे तू ने मास्टर कर लिया, तुझे क्यों नहीं आती, उर्दू तो लाजमी है। तो कह रहे हैं वो कर तो लिया, भर्रों से कर लिया हमने, तो भर्रे में भी तो कुछ लिखा होगा ना, लिखना कैसे भूल गए। अबे उर्दू का पेपर फर्रा, फर्रा तो समझते ही होगे ना, नकल से भी अगर तुमने उर्दू का पेपर हल किया है तो भी तो उर्दू में ही लिखा होगा ना, तो लिखना तो आना चाहिए। नहीं जी लिखना भी नहीं आता। तो तूने बीए कैसे कर लिया? सही है ना, कर लिया भाई, उर्दू लिखना नहीं आती। हमारे लड़के यार जो दफ्तर में, कितनी दफा मैंने लड़कों को बोला शॉर्ट क्लिप पे भाई तुमने जो थंबनेल डाला हुआ है उर्दू गलत लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है उर्दू। अपने मैंने एडिटर को जाके पकड़ा, यार ये तुमने क्या लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी ये लफ्ज लिखते हैं। कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आती ही नहीं लिखना। मैंने वलीद भाई से बोला लिख के दो, तो वलीद भाई ने पता नहीं क्या लिख के दे दिया, जो लिख के दे दिया हमने चला दिया। भाई यार तुम तो पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखों का ये हाल है। तो ऐसा सोतेलापन दुनिया में कोई इज्जतदार कौम अपनी जबान के साथ, ये गुलाम कौमों की आदत होती है, इज्जतदार कौमें ऐसा नहीं करती। और सुप्रीम कोर्ट ने तो लॉ भी पास किया हुआ है उर्दू की हिफाजत, तो लॉ पे भी अमल नहीं हो रहा। खैर हम कहां उर्दू की तरफ निकल लिए, तो हम अपने बयान की तरफ वापस आते हैं, जल्दी से समेटता हूं मैं। क्या कह रहा था मैं? हाँ मैं बात कर रहा था कल्चर की। तो शरीयत ने किसी को अपनी जबान छोड़ने का नहीं कहा कि सब अरबी ही सीखो, नहीं भाई, इस्लाम तमाम कौमों के लिए, तमाम जबानों के लिए। तो सब कौमों में जो कल्चर है रखें, बस कुछ हिदायत इस्लाम ने दे दी है कि उन हिदायत से दाएं बाएं जाने की इजाजत नहीं है। ये बयान क्या कर रहा था, कहां से कहां निकल गए हम? हाँ मैं ये सॉरी मैं ये अर्ज कर रहा था कि दो चीजों में इतदाल जरूरी है। नंबर एक, दीन पे चलते हुए शर्म महसूस ना करो, वो जो असल है, अजान देते हुए शर्म महसूस ना करो, दाढ़ी रखते हुए शर्म महसूस ना करो, नमाज पढ़ते हुए शर्म महसूस ना करो। जहाज में हो नमाज पढ़ेंगे भाई, हम ट्रेन में हो नमाज पढ़ो, जो वो मुल्ला मुल्ला बोले जो मर्जी, औरत है पर्दा करूंगी मैं, चाहे मुझे मुल्ला नहीं बोलो या जो मर्जी बोलो, मैं पर्दा करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम लेवल ये भी है कि बाज लोग इतने मुस्तगनी हो जाते हैं कि नमूने बन के भी उनको शर्म नहीं आ रही होती, वो नमूने बने हुए होते हैं। तो भाई उस तरफ इतना नहीं जाना कि आपकी ड्रेसिंग ऐसी अजीब सी हो गई, तो भाई आप इस्लाम का ऐसा इमेज ना लोगों के सामने लेके जाओ कि लोग इस्लाम के करीब आने के बजाय दूर होना शुरू हो जाए। ठीक है मिट्टी के बर्तन में खाना पीना सेहत के लिए अच्छा है, नबी ने जो भी काम किया वो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन एक एज होती है ना जब आप घर के सरबरा बन जाओ, फिर आप लाओ मिट्टी की हांडियां। अभी आप बच्चे हो, घर में घर वाले बेजार हो जाएंगे, यार ये क्या कर रहा है भाई। और रिश्ते वाले को जब पता चलेगा तो कोई रिश्ता देगा, तो ये दो इंतहाएं हैं जिसके बीच में हमने बोलो चलना है, ये मैं कह रहा था। तो जो इस तरह से अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के सुपुर्द करेगा, शरीयत पे चलेगा, तो वो अलामतें अल्लाह ने बयान की हैं कि इल्लल मुसल्लीन, पहली अलामत क्या है, हर हाल में वो नमाज को कायम करते हैं, लोग उनको मुल्ला बोले तो भी पढ़ते हैं, मुल्ला नहीं बोले तो भी पढ़ते हैं। और अल्लदीनहुम अला सलातिहिम दाइमून, फरमाया सिर्फ पढ़ते नहीं है, बहुत मजबूती से नमाजों को कायम करते हैं, बहुत मजबूती से, कजा नहीं होने देते नमाज किसी भी। नमाज पढ़ना आसान है भाई, पाबंदी से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, तो पाबंदी से पढ़ते हैं। वल्लदीनहुम अला सलातिहिम दाइमून, वल्लदीनहुम इल्लल मुसल्लीन अल्लदीनहुम अला सलातिहिम दाइमून, वल्लदीनहुम हाँ والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم। आपने देखा कुछ लोग नमाजी होते हैं, पैसों के लेन देन में गड़बड़ी होते हैं, दुनिया की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत बहुत होती है। मैंने ऐसे बाज लोग देखे, से हज नमाज रोजा सब चल रहा है, पैसा जेब से नहीं निकलता उनके, रिश्तेदार भूखे मर रहे हो, पड़ोसी भूखे मर रहे हो, पैसे पे सांप बन के बैठे हुए होते हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐसा नहीं है, दौलत से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि उनके माल में जो मुस्तहिक लोग होते हैं ना, मांगने वाले, मुस्तहिक मांगने वाले, हर भिखारी को देना जायज नहीं है, जो वाकई मुस्तहिक हो, ऐसे मांगने वालों का और ना मांगने वाले जो मुस्तहिक हैं उनका हक होता है उनके माल में। वो कहते हैं भाई हम इन पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें दिया इसलिए ताकि हम गरीबों का ख्याल करें, रिश्तेदारों का ख्याल करें, उनके पूछे बगैर उनको दे रहे होते हैं। अल्लाह को कंजूस आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी मजा आता है, बड़ा मजा आता है जब ये हदीस पढ़ता हूं, फरमाया सखी जो है करीबुम मिन अल्लाह, जो सखी आदमी है ना खर्च करता है लोगों पे, वो अल्लाह के भी करीब, करीबुम मिन अन्नास लोगों के भी करीब, करीबुम मिन अल्जन्ना जन्नत के भी करीब, यानी जन्नत के तो करीब है ही, अल्लाह के भी करीब है, दुनिया में भी एक इनाम मिलता है, लोगों के दिल में भी उसकी मोहब्बत बैठ जाती है, ये दुनिया में उसको सिला मिलता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, यार फला मौके पे इसने अपना पैसा खर्च करके मुझको मुसीबत से निकाला। पैसा खुदा की कसम ऐसी चीज है ना, अगर आप पब्लिक पे खर्च करना सीख जाओ, आप के जो मुखालिफिन है ना वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। मैं तो इस पे बहुत सारे वाकया सुनाता हूं ना, आपके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा बोलता है लिफाफे में 50 रुपए डाल के हदिया दे दो, आप देखो उसी दिन से चुप। आप इस नियत से नहीं दो, ये तो मैं इस नियत से देना तो ठीक नहीं है कि एहसान करना ताकि वो रिश्वत कहलाएगा ना ये तो, लेकिन वैसे इसमें ताकत बहुत है, ताकत बहुत है। रिश्तेदारी जोड़ने में जितना रोखड़े का दखल है, इतना किसी और चीज का दखल नहीं। एक भाई दूसरे भाई को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को आप गिफ्ट दो पैसों की सूरत में, खुशबू के डब्बे दे के टाइम जाया मत करो, तो उससे क्या होता है, रिलेशन मजबूत होता है। खुशबू के डब्बे इसलिए कह रहा हूं, खुशबू हर शख्स अपनी मर्जी के से, वो थैंक यू तो कह देगा लेकिन उसको क्या करना है। मैंने देखा जिनको भी कोई खुशबू दो जो पसंद आए तो ठीक है, नहीं आई तो वो क्या करेगा, पड़ी रहती है खुशबूएं। पैसा देना सीखो, पैसा आपको कंपनी में, गरीब की बात कर रहा हूं, गरीबों को क्या दिया करो, पैसा, बकरे मत काटा करो। आपको कंपनी में अगर कंपनी कहे कि हम हर महीने आपको इतने परफ्यूम के डब्बे दिया करेंगे उस काम के बदले में जो आप हमारे पास कंपनी में कर रहे हैं, या हम आपको 2 बकरे सदके के काट के दे दिया करेंगे, आप बोलोगे ये बकरे भी अपने पास रखो, ये डब्बे भी, मुझे पैसे चाहिए कैश, मेरी मर्जी, मैं बकरा खरीद के खाऊं या खुशबू खरीदूं। तो जो अपने लिए पसंद करते हो गरीब के लिए भी वो पसंद करो, इसलिए बकरे सदके के, बकरे के मैं इसलिए खिलाफ हूं, इसमें मकसद होता है जानवर काटना, हालांकि जानवर काटना इबादत सिर्फ बकरीद में और अकीके में और हज के मौके पे, बाकी जानवर काटना कोई इबादत नहीं है, इससे कोई बलाएं नहीं टलती हैं, खूब समझ लो, सदके से बलाएं चलती है तो इसका मतलब बकरा कहां से आ गया, तो सदके से टलेंगी ना, तो पैसे दो ना उसको, तुम बकरा काट के बलाएं टाल रहे हो, उसका मतलब जाहिलाना अकीदा है। बकरा काटने से तो नुकसान ये होगा कि बकरे की बद्दुआएं भी लगेंगी जब बिला वजह बकरा काटा जाएगा। हमारे फरमाया करते थे कि लोग बलाएं टालने के लिए, मौत के फरिश्ते को भगाने के लिए बकरा काटते हैं, मौत का फरिश्ता इतना होशियार है, बकरे की भी जान ले जाता है और तुम्हारे बंदे की भी जान ले जाता है। कहते चलो देखो, और मैं आ रहा था तुम्हारे मरीज की जान लेने के लिए था, चलो बकरे की भी साथ में ले जाता हूँ, काम हल्का हो गया उसका, ठीक है ना। तो सदका, सदका पैसों में होता है। हाँ, किसी गरीब के बारे में डर ये कि इसको पैसे दिए तो चर्च में उड़ा देगा, बाल बच्चों वाला है, इधर उधर गुटके में उड़ा देगा, तो फिर राशन डाल दो। क्या ख्याल है भाई, आटा दाल घी का डब्बे ये लेके डाल दो। हम जकाते रमजानों में बांटते हैं ना, तो बहुत से लोगों को मैं कैश नहीं पकड़ाता, मुझे डर होता है कि यार ये पता नहीं खा ना जाए ना, घर का सरबरा है याशी में ना उड़ा दे। तो हम कहते हैं भाई आपको हम क्या देंगे, हम राशन देंगे, घर का एड्रेस दे दो, उसमें आटा घी दाल। अब वो बेचना आसान नहीं होता, घर बच्चे भी होते हैं, अब्बा हमारा घी का डब्बा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी इंसान को शर्म आ जाती। वो एक कंजूस आदमी देसी घी लेकर आया, उसके बच्चे बहुत बोलते थे अब्बा घी चाहिए घी चाहिए घी चाहिए, कंजूस था, कमबख्त खिलाता नहीं था। एक दिन घी का डब्बा ले आया ना, अब आपको पता है घी का जो टीन है उसके बाहर भी चिकनाई होती है ना अक्सर, तो उस कंजूस ने बच्चों से बोला देखो जब तक बाहर चिकनाई लगी भी है ना, बाहर डब्बे से रोटी लगा लगा के खाओ, जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी फिर डब्बा खोलेंगे हम। ऐसे कंजूसों को मैं कह रहा हूं कि उनको फिर कैश अमाउंट ना पकड़ाओ। तो वो कंजूस के बच्चे थे, वो भी क्या कर रहे थे, इंसान के बच्चे होते बोलते अब्बा तू खुद ही खा ले, तो वो क्या कर रहे हैं, डब्बे से लगा लगा के खा रहे, चमका दिया उसको ना उन्होंने। अब इसको जाना था सफर पे, इसने कहा ऐसा ना हो एक महीने बाद आऊं तो डब्बे की वाट लगी पड़ी हुई हो। ये डब्बा अलमारी में बंद करके चला गया, लॉक करके, ये जब मैं आऊंगा तो खुलेगा। एक महीने बाद ये आया, बच्चों से पूछा कमबख्तो तुमने डब्बा तो नहीं खोला, घी तो नहीं खोल के खाया। उन्होंने कहा नहीं। कहते फिर रोटी कैसे खाते थे, अब्बा अलमारी से लगा लगा के खाते। तो ऐसे कंजूस को क्या देने चाहिए फिर, उसके घर में राशन डलवाओ भाई, क्योंकि इसको पैसे दोगे खा जाएगा। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।
हाँ भाई, मसला ये है कि तिलावत वगैरह करने में अल्फाज बहुत से सही अदा नहीं हो रहे, कई बार जोर लगाकर अदा करना पड़ रहा है, इसका कोई इलाज है? क्योंकि इस तरह दुआओं तिलावत में भी दिल नहीं लगता, अगर वैसे ही रवानी से पढ़ लूं तो ज्यादा तवज्जो ना दूं। ये भी वहम की एक बीमारी है, बाज लोग बहुत गला फाड़ फाड़ के कुरान और वो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नगार दी, वहमी होते हैं ये, दिमाग इनका फिर थोड़े दिनों में खराब हो जाता है। किसी कारी से तजवीज सीखें और नॉर्मली हल्की उससे पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कबूल करेगा। बहुत ज्यादा गले पे दबाव डालना और बार बार एक लफ्ज को रिपीट करना ये ठीक नहीं है। यार ये कुर्सी को थोड़ा सा तो ब्रेक लगाएं, बिल्कुल ही पीछे जा रही है। जी अब सही है, अब नीचे हो गई, चलो खैर है। अच्छा भाई देखो, बीवी अगर बद जबान हो और सारी अच्छाइयां हैं उसमें, एक बच्ची भी है और क्या लिखा हुआ है यार, और पैसा भी, और पैसा पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने, राइटिंग सही नहीं है लोगों की। देखो बीवी अगर बस जबान है, बाकी सारी अच्छाइयां, सिर्फ एक जबान बहुत खराब है, तो आपकी बीवी आप खुद बेहतर फैसला कर सकते हो कि क्या करना है आपने, सही है ना। जो जिसकी बीवी है वो खुद बेहतर फैसला, वैसे तो यही बर्दाश्त करो भाई जब इतनी सारी खामियां खूबियां हैं। बाद दफा इतनी ज्यादा कोई औरत बदज़बान होती है कि आदमी की खोपड़ी बिल्कुल ही आउट हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चे फिर पैदा होते रहते हैं वो भी बदज़बान बन जाते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर हुदूदुल्लाह पे कायम रहना मुमकिन ना हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, गोलियों पे आ गए, जिंदगी अजाब बन गई है, तो फिर मोहब्बत से अलहदगी कर लेनी चाहिए। तलाक बहुत नापसंदीदा चीज है, इंतहाई शदीद मजबूरी में फिर वो नापसंदीदा नहीं रहती, और अगर किसी में बर्दाश्त ज्यादा है तो बर्दाश्त करे, क्योंकि बहरहाल घर बसाने की बरकतें घर तोड़ने से बहरहाल ज्यादा ही है। और वैसे भी एक उसूल याद रखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना,
تو یہ سب چیزیں پھر دوسرے درجے میں چلی جاتی ہیں. یہ شروع شروع کے مسائل ہوتے ہیں. تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو میاں بیوی سب بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اتنی بد زبان نہ ہو کہ بچوں کو بھی خراب کر رہی ہو, پھر بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پھر بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے ایسے آدمی کا. بچے پھر ماں کے ساتھ مل کے ابا کا چترول لگاتے ہیں, پھر ابا انجوائے کرتے ہیں, پھر میرے پاس آتے ہیں کہ آج کل میرے ساتھ گھر میں یہ سلوک ہو رہا ہے. اچھا میرے بھائی, کیا رفع الیدین کرنے سے یا جب فجر کی نماز کا وقت, یار اردو میں لکھا کرو نا, انگلش میں لکھو, اردو میں لکھو, رومن میں لکھا ہوا ہے, پڑھ کے سنا بھائی, مجھے تو آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. جمعے کی کے, یہ بھی اتنا کاٹا پیٹا ہوا ہے, اردو میں لکھا ہے لیکن کاٹا لکھ, جمعے کے خطبے سے کتنی دیر پہلے خاموش ہونا چاہیے؟ اذان جب شروع ہو جائے نا جمعے کی خطبے کی, تو اسی وقت خاموش رہنا چاہیے. البتہ اس اذان کا جواب دے سکتے ہیں. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس میں میں نے پوری تحقیق کی تھی, تو اصل فتویٰ اسی پر ہے کہ اس جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے, باقی کوئی کلام نہ کرے انسان, تو اذان ہوتے ہی خاموش ہو جائے. اچھا بھائی, یہ ہو گیا بھائی. دوسری اذان کا جواب اسی کا میں نے بتایا کہ اس میں ائمہ اکرام کا اختلاف ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے اس قول کی کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. صاحبین کا قول ہے کہ دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے, لیکن اس بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے. تو اس لیے احناف میں بہت سو نے اس میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے, اور اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ شاید امام ابو حنیفہ تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہو. اس پہ میں نے ضرب مومن میں تفصیل سے لکھا تھا. میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں. اچھا میرے بھائی, بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بیلٹ باندھ کے رکعتیں کیسے ہوتی ہیں؟ فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں, بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں. بیلٹ باندھ کے بھی پڑھ نماز ہو جاتی ہے, بغیر بیلٹ کے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے, تو اگر ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی ہے, باقیوں میں نہیں کھڑے ہوا جا رہا, تو بیٹھ کے پڑھ لیں. جتنی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھ لیں, جو کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں, نماز ادا ہو جائے گی. ایسے بھی ٹھیک ہے, اگر شروع میں کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا, بیٹھ کے پڑھ لی, اگلی رکعت میں ہمت ہو گئی تو اگلی میں کھڑے ہو جائیں, ہر طرح سے ٹھیک ہے. کچھ عرصے سے تلاوت دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ, کچھ الفاظ کی ادائیگی زبان سے نہیں ہوتی, متعدد دفعہ زور لگا کر تکلف کے ساتھ تلاوت کرنا پڑتا ہے. نہ زور لگایا کرو, اس سے دماغ گلا بعد میں خراب ہوگا, دماغ پہلے خراب ہوگا, وہمی بن جاتا ہے آدمی. نارملی بس روانی سے پڑھیں, اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا کسی قاری سے سیکھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں, بس زور وور زیادہ نہ لگایا کریں, وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ پھر ٹھیک ہی نہیں ہوئے, وہ صحتیں بھی برباد ہو گئی ڈپریشن میں جا کے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو اس طرح سے اپنے اوپر مسلط نہ کیا کرو. مفتی صاحب, آپ کے لطیفوں اور قصوں کی کثرت, گستاخ سیاست دانوں کی بے جا تعریفیں, اور قرآن والی غلطی پر کھل کر ندامت اور اعتراف نہ کرنا, ان چند باتوں پر عارفی نامہ کو آپ سے شدید بدگمانی ہے, آپ اعتراف یا وضاحت کچھ تو کریں. اچھا, ورنہ نور العارفین صاحب اپنا دم توڑ جائیں گے. توڑ دیں بھائی, نور العارفین صاحب جو بھی ہیں, جو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں. کون سے گستاخ سیاست دان کی میں نے حمایت کی ہے بھائی؟ اور پہلی جملہ کیا تھا, قصوں اور کہانیاں. تو جو بھی قصے کہانی ہوتے ہیں کوئی سبق کے لیے ہوتے ہیں, بلا وجہ کوئی شو تو نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ. پورا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہوتا ہے, اس میں چند لطیفے آ جاتے ہیں جو کوئی موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو اچھا ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور باقی جو بات ہے وہ قصے کیوں دوبارہ چھیڑ رہے ہیں, اس پہ پوری وضاحتی میں ایک گھنٹے کا کلپ بھی ریکارڈ کروا دیا میں نے, اور اس پہ پوری وضاحت دے دی, تو ختم ہو گئی بات. پھر بھی کسی کو چھیڑنا ہے تو چھیڑ دے. ابھی کوئی مولوی صاحب میرے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہر جمعے کو, یہ کافر ہو گیا, اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا, ہر پھر اگلے دن بیان ہوگا, اگلے جمعے میں پھر بیان. یہ کافر ہو گیا, اس کی بجر نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا, قریب میں ہی ہے. ہماری کمیٹی والے پہنچ گئے اس کے پاس تفتیش کے لیے, یہ نہیں کہ اس کو منع کرنے, کمیٹی کے بعض لوگ منع کرنے نہیں, پوچھنے کے لیے کہ واقعی ہمارے امام سب کافر ہو گئے. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کمیٹی کے چند جو دو چار لوگ پہنچے تھے, سب نہیں, میں نے کہا تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو نالائق ہو؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی مفتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ روحانی عامل ہے, وہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے, حقیقت ہے, وہ مفتی کہاں سے ہو گیا؟ اب اس کو تکلیف مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اس کو تکلیف یہ ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, تو اس کو تو موقع چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا. اور میں نے کہا دوسری بات, اگر تم نے اس کے فتوے کو ماننا ہے تو تم سب کا نکاح تو ٹوٹ گیا پھر. وہ تو یہ کہہ رہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا رنڈوے ہو اس وقت, تو تم لوگ رنڈوے ہو. تو فتنہ فساد الگ چیز ہے, اصلاح الگ چیز ہے. تو سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کیا کرو, فساد کی کوشش مت کیا کرو. اگر کوئی کسی کو قتل کرے, باقی جو گستاخ سیاستدانوں کی حمایت تو بتاؤ نا, کون گستاخ سیاستدان ہے جس کی میں نے حمایت کی ہے؟ اگر کوئی کسی اور گستاخ کے فتوے لگانے کا کی اتھارٹی کس کے پاس ہے, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی کو جب چاہے گستاخ کہہ دے, اس کا معیار کیا ہے؟ کیا پاکستان میں بے گناہ لوگوں کے قتل نہیں ہوئے اسی بات پہ؟ ابھی تو پھر یہ حساس ٹاپک ہے, میں اس پہ بات کروں گا, ایک ایشو بن جائے گا. ورنہ ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں نا, جو کتنے بے گناہ, میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے, کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پہ گستاخیوں کے الزام لگے اور وہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی. کچھ لوگوں پہ صحیح الزام بھی لگے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن بوسوں پہ غلط الزام بھی لگے ہیں. صرف کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہے اور پھر تھانے پہ دباؤ ڈالا, پھر جج پہ دباؤ ڈالا, جج اپنی جان بچانے کے لیے اگلے کو جیل میں بھیج رہا ہے. یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے اور بہت کثرت سے ہوا ہے پاکستان میں. بندہ اٹھا کے ادھر مار دیا, کسی نے ادھر اٹھا کے بندہ. بھائی یہ ملک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جو جب چاہے اٹھے, جس کو آپ کی ذاتی دشمنی چل رہی ہوتی ہے آپ نے اس پہ گستاخی کا لگا دیا الزام اور اڑا دیا بندہ, ہیرو بھی بن جاتے ہو پھر آپ. یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لا قانونیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے. تو وہ عامل ہے, بنیان سونگتا ہے, تو بیچارے کا کام یہی ہے فتوے لگانا میرے اوپر. ادھر قریب میں ہی ہے, تو چونکہ اس کی ظاہر ہے دکان بند ہو رہی ہے, میں بار 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 جب سے میں نے بنیان سونگنے کا کہا ہے نا, وہ تو سونگتا ہے, وہ تو بالکل ہی ٹھا کر کے جا کے لگ رہی ہے. حالانکہ میں نے اس کا نام تھوڑی لیا, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ ایسا ہے, میں نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ جو بھی عورتوں کے بنیان سونگتے ہیں. تو وہ فوراً کہتا ہے وہ تو میں سونگتا ہوں. دھوبی کو آپ اپنا بنیان دو نا میلا, اور کو تو اس کو سونگ, تاکہ پتا چلے کتنا گندا ہے, تاکہ صرف اس حساب سے ڈالے. وہ سونگے گا کبھی بھی نہیں ہوگا, تیرا بنیان ہے میں کیوں سونگوں, ڈائریکٹ مشین میں ڈالوں گا میں اس کو. لیکن یہ عامل لوگ, ان کو شرم نہیں آتی دوسروں کے بنیان سونگتے ہوئے. انسان اپنی بدبو برداشت کرتا ہے. دیکھو آپ واش روم میں ایک گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے انسان, حالانکہ بدبو آ رہی ہوتی ہے, لوگ دروازے بجا بجا کے تھک جاتے ہیں, نہیں نکلتا. اپنی بدبو سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن کوئی اور واش روم سے آئے ہو آپ, جیسے ہی جاؤ گے کیسے ناک پکڑ کے گھوم رہا ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے بھائی, اپنا بنیان برداشت ہو جاتا ہے, دوسرے کا بنیان برداشت نہیں ہوتا. یہ عاملوں کا ظرف ہے, دوسروں کا بنیان سونگتے ہیں وہ. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور پھر مقتول کے بھائیوں سے کہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو میں ماروں گا, تو اس کا کیا جواب ہے؟ بہت آسان جواب ہے, آپ اس کو قتل کر دیں, بولے تیرے نصیب میں بھی یہ لکھا ہوا. کیا خیال؟ زمین میری تم کاش کرو, نفع آدھا میرا آدھا تیرا. یہ زمین میری تم کاش کرو, میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو. اس مسئلے کی وضاحت کریں. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے, گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے, لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے. صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے, حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے. انہوں نے اس کو سود کا ہے, سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی زمین آپ کی, آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو, اس میں کرائے پر اجارہ تو شرن سب کے نزدیک جائز ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی, और किसान को ये कहा कि भाई तू मेहनत कर, जो पैदावार होगी इतने परसेंट मेरी, इतने परसेंट तेरी। अब इस पे बाद लोगों को इश्काल होता है कि जमींदार तो बैठ के खा रहा है। बैठ के नहीं खा रहा, उसकी जमीन इस्तेमाल हो रही है, किसी का पैसा इस्तेमाल होता है, किसी की मेहनत होती है। जो गरीब आदमी है वो मेहनत करता है, जो पैसे वाला आदमी बैठ के खाता है। तो ये तो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। अगर पैसे वाले ने भी बैठे बगैर खाना था तो पैसे का फायदा क्या हुआ उसका, क्या ख्याल है भाई? आदमी पैसा कमाता है। देखो हम कितने लोगों को जानते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाया, दुकानें बनाई, अब कहेंगे यार हमने बड़ी मेहनत कर ली, अब हम दुकानें किराए पे देके बैठ के खाएंगे। तो यहां भी इश्काल होगा, यार तुम दुकान दे दी, अगला दुकान से बिजनेस कर रहा है, मेहनत वो कर रहा है, शटर वो बंद कर रहा है, ताला वो डाल रहा है, सारी चीजों की हिफाजत वो कर रहा है, तुम यहां बैठ के खा रहे हो। तो इसको सूद कहा जा सकता है। तो जैसे दुकान रेंट पे देके लोग बैठ के खाते हैं, तो ऐसे ही जमीन भी रेंट पे देके बैठ के खाने में शरण कोई कबाहत नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ एक चीज नाजायज है इसमें, जो हदीस में ममानत है वो ये है कि जब जमींदार जमीन किसान को देगा तो, और किसान को ये कहा कि पूरी जमीन पे तुमने टमाटर उगाने मसलन, तो ये जायज नहीं है कि ये वाले टुकड़े से जो पैदावार होगी ये तुम्हारी होगी, बाकी सारी किसकी होगी? मेरी। क्योंकि इस बात का इम्कान है कि उस टुकड़े में पैदावार ही ना हो, या उसमें कम हो, या उसमें बहुत ज्यादा हो जाए। तो जितनी जमीन दी है उस पूरी में शिरकत करनी पड़ेगी भाई, टोटल जितनी पैदावार होगी उसमें इतने परसेंट मेरा, इतने परसेंट तुम्हारा, ताकि पैदावार कम हो तो दोनों का, दोनों के प्रॉफिट में कमी हो, पैदावार ज्यादा हो तो दोनों के प्रॉफिट में इजाफा हो। सरमायादार क्या करता है, इजाफा सारा खुद, और उसको स्पेसिफिक एक चीज पकड़ा दी, ना 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 ना, ये उस मजदूर पे जुल्म है भाई। अगर पैदावार ज्यादा होगी तो उसका हिस्सा भी ज्यादा हो जाएगा, पैदावार कम होगी तो उसका हिस्सा अगर कम होगा तो तुम्हारा हिस्सा भी कम हो जाएगा। जैसे मुशारकत और मुजारबत में होता है, आपने पैसा लगाया तो नफा नुकसान पे होता है भाई, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका भी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो परसेंटेज के हिसाब से यही फायदा होता है। तो जमीन मुजारात पे देना भी जायज है, यानी कि एक की जमीन हो और दूसरे की मेहनत हो, और पैदावार को वो लोग परसेंटेज के हिसाब से शिरकत कर ले, और किराए पे देना भी शरान जायज है कि आपने जमीन दे दी भाई मुझे किराया चाहिए इसका, जैसे मकान किराए पे देते हो आप। अमेरिका में मौजूद और वहीं की नेशनलिटी का हामिल एक नौजवान जो जिस्मानी तौर पर खासा मजबूत और जहनी तौर पर माजूर है, इसके वालदैन इसकी शादी पाकिस्तान में मौजूद एक लड़की से जो खुद भी थोड़ी सी एबनॉर्मल है और अपने सौतेली माँ के जेरे कफालत है, इससे करना चाह रहे हैं, क्या कोई गलत बात तो नहीं है? क्योंकि लड़के को शादी या तलाक के मसले पर दीगर दुनियावी मामलात में कुछ नहीं पता, जो इसके वालदैन को बता देते वही करता है। आपसे रहनुमाई का तालिब हूं कि लड़के के नाना ने मुझसे कहा है कि आपसे रहनुमाई हासिल करूं। देखें पागलों की शादी भी फुकाह ने ये भी इसके भी अहकाम लिखे हैं, क्योंकि शादी इंसान की जिस्मानी जरूरत है। बाज लोग दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता लेकिन उसमें सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो शरण उनकी शादी भी जायज है इस्लाम में, लेकिन उनकी जब शादी की जाएगी तो सामने वाले को बता के की जाएगी। धोखा देके की तो औरत को डिवोर्स का हक, यानी निकाह के खत्म करने का हक हासिल होगा, तो बता के की जाएगी भाई हमारा ये बच्चा थोड़ा सा पागल है, जितना है उतना बता दें, थोड़ा है तो थोड़ा बता दें, ज्यादा है तो ज्यादा बता दें। तो जाहिर है सामने वाला रिश्ता, सामने वाले रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ अगर सामने वालों में कोई माजूरी है, वो भी माजूर बच्ची है, तो उनको पता है कि अगर हमारी बच्ची के लिए कोई रिश्ता आएगा नहीं तो हो सकता है वो कर दें। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग से दोनों के वली की इजाजत से शरण जायज है, इसमें कोई गुना नहीं है। तो फिर दोनों की निगरानी माँ बाप ही करेंगे जाहिर है, क्योंकि उनको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, दोनों पागल हैं, दो पागल एक जगह जमा हो जाए तो आपको पता है कि। तो बहरहाल शरीयत में ये जायज है, बशर्ते के दोनों के वली इस पे राजी हो, फिर जायज है। निकाह में अल्लाह ने बहुत वसत दी है, हमारे सेकुलर लिबरल लोग तो नहीं मानते ना, क्योंकि तो जिना के कायल हैं। मेरे जानने वालों में एक शादी ऐसे हुई है कि लड़का माजूर है, लड़का डिसेबल है, जहनी तौर पे थोड़ा माजूर, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा माजूर है, लेकिन लड़के वाले हैं करोड़पति अरबपति। अब जो लड़की है वो तलाक याफ्ता भी है, इंतहाई दर्जे की गरीब भी है, तो उस लड़की ने खुद ही उस माजूर से शादी की है। क्यों की है शादी? मेरे पास ये केस आया था, لڑکے کی ماں نے کہا ہمارا بیٹا معذور ہے لیکن ہم نے شادی کرنی ہے, کیونکہ اس میں ڈیزائرز ہیں, بالغ ہو گیا پتہ چل جاتا ہے نا ماں باپ کو بھائی اس میں خواہش بہت زیادہ ہے, تو اب ہم کہاں شادی کریں. میں نے کہا جو راضی ہو جائے اس سے کر دیں, جو راضی ہو جائے, دھوکہ نہ دیں کسی کو اور لڑکی کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے, ایسا نہ ہو کہ باپ پہنا دے کہ بھی چلو. تو ان کے لیے ایک رشتہ آیا کہ انتہائی غریب لڑکی, طلاق یافتہ بھی, تو صورت کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی. تو اس لڑکی کے ماں باپ, اس لڑکی والے اپنی بیٹی کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی ان کو صحیح آدمی مل لیے نا شادی کے لیے. تو لڑکی سمجھدار ہے, طلاق یافتہ ہے, بچے بھی ہیں اس کے. تو لڑکی راضی ہو گئی. کیوں راضی ہوئی؟ بھائی میں انتہائی غریب گھرانے کی ہوں تو مجھے میرا شوہر تو نہیں پالے گا لیکن ساس سسر مجھے, وہ تو مجھے گھر میں اتنے بڑے بنگلے میں ٹھکانا مل جائے گا, تو کوئی بات نہیں میں شوہر کو سنبھال لوں گی, کوئی بات نہیں, لیکن مجھے ایک ٹھکانا مل جائے گا. تو لڑکی کے ماں باپ نے بھی سوچا ہماری بیٹی گھر گھر دھکے کھاتی پھر رہی ہے, کبھی اس کے گھر ملازمت عزت بھی محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے بہترین حل دیا ہے, بھائی اگر آپ کو کوئی رشتہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ کر دیں شادی اس کی. تو انہوں نے شادی کر دی, وہ خوش ہے الحمدللہ, کیونکہ اس کو ایک بڑا گھر مل گیا, اچھا خاندان مل گیا. تو اور اس لڑکی سے کوئی بھی نارمل آدمی شادی کے لیے تیار نہیں تھا. تو جہاں دھوکا ہوگا وہاں جائز نہیں ہے, جہاں دھوکا نہ ہو وہاں دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, جب وہ دونوں خوش ہیں تو کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بننے کی کیا ضرورت. ممکن ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ بولیں لو ایک اچھی بڑی لڑکی معذور کے حوالے کر دی, بھائی وہ لڑکی خوش ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ویسے ہی گھروں میں جا کے معذوروں کی خدمت کر کے پیسے کما رہی ہوں. یعنی میں اپنے شوہر معذور کی خدمت کر کے پیسے کما لوں, اچھا نہیں ہے کیا؟ مجھے وراثت بھی ملے گی, مجھے اولاد بھی. اولاد معذور نہیں ہوتی, بعض دفعہ شوہر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد میں یہ بیماری نہیں آئے گی, تو مجھے اولاد مل جائے گی, مجھے ایک اچھا سسرال مل گیا. تو ہر ایک کو ساری نعمتیں نہیں ملتی, کچھ چیزوں سے بعض دفعہ دستبردار ہونا پڑتا ہے. تو میرے پاس آیا کیس, میں نے کہا بھائی جب لڑکی بھی خوش ہے اور آپ لوگ بھی اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو لڑکی کے بھی عیش ہیں, مزے ہیں بھائی. ورنہ وہ مجھے پتا تھا وہ بےچاری گھر کے دھکے کھا رہی تھی. ہمارے لبرل لوگوں کے پاس تو یہی ہے کہ بس اس کو کہیں معافی بنا دو, اور کوئی حل ان بےچاروں کے پاس نہیں. ان کے لیے تو نہ تعلیم کے پیسے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لے تو ڈیزائرز تو لڑکی میں بھی ہے نا, خالی تعلیم ہی ہر چیز کا علاج تھوڑی ہے, خواہشات تو اس میں بھی ہیں. تو زنا کی طرف جائے گی, پبلک پراپرٹی بنے گی وہ. تو اسلام نے حل بتایا کہ بھائی لڑکی اور اس کے ولی اگر راضی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے اس میں کچھ. ہاں اس میں لڑکی کے ولی کے ذمے ہے کہ وہ بیٹی کا فائدہ دیکھ کے کرے کہ اس کے نقصانات کم ہیں, اس کے نکاح کے فائدے زیادہ ہیں تو کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں, مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں اور منہ توڑ دیں گے, تو پھر جائز نہیں ہے کرنا. بھائی بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں, وہ بےچارہ معذور ہے ذہنی, لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا ہو. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی کو, پیسہ ملے گا بچے کی تو پیسہ ملے گا نا, ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں. تو معذور معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مفتی صاحب موت کی فضیلت کیا ہے؟ موت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی, اللہ کی راہ میں موت کی فضیلت بہت ہے. شہادت جسے کہتے ہیں وہ تو فضیلت ہی فضیلت ہے, باقی مرنے کی کوئی خاص فضیلت ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے سامنے. اچھی موت کی فضیلت ہے, نیک اعمال پہ موت. سعید انور کے بارے میں حضرت طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ, ابے کیا پاگل آدمی سعید انور صاحب, بڑے نیک آدمی, کتنے ایسی فضول بات کی کسی. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہے اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں. میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری بہن ان کے پاس جانا چاہتی ہے, اس مسئلے میں وہ کیا کرے؟ کوئی جادو وادو نہیں کیا, جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے, نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو, پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام, میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. लोग मरते हैं कि लड़कियां मरती हैं, मेरे होस्टेस बने, कंडक्टर की कंडक्टर हर अड्डे पे उतर जाता है नीचे, ठीक है ना, थोड़ी देर में, और चलो मौली साहब सूफी साहब धक्के भी देता है लोगों को, चलो आगे, आपने तमीज से बात नहीं की ना, थोड़ी देर बर्दाश्त करेगा, उसके बाद उसी स्टाइल में भर के गाली भी पार्सल कर देगा, आप धक्का देके नीचे भी उतार देगा आपको, आगे बैठा होगा गुटखा खा रहा होगा, पान खा रहा होगा। एयर होस्टेस की जॉब शुरू शुरू में देखने में लगती है कि यार देखो जहाज में कितना साफ सुथरा लिबास पहन के जा रही है, आप कि एक एक साल दो दो साल जहाजों में सफर, हदीस में आता है सफर उ सकर, सफर जो है ये सकर है, सकर जहन्नम को बोलते हैं, यानी टेंशन है सफर, और जहाज का सफर तो बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि एक ही रूटीन है ना आपकी, कंडक्टर की एक जैसी रूटीन नहीं होती, यहां से निकल रहा है उधर से, जितनी भी बस भरी हुई हो इधर से घुसेगा आगे से निकल भी आएगा, वो ये भी इंजॉय करता है ना वो लाइफ को, यहां से घुसा सबसे किराए लेके, उसकी जेब कभी नहीं कटती, सबकी कटेगी जेब, कंडक्टर की नहीं कटेगी, यहां से घुसा उधर से निकल आया, तो खैर वो भी टेंशन वाली जॉब है, मैं नहीं कह रहा कि कंडक्टर की जॉब हल्की है, लेकिन एयर होस्टेस की जॉब बहुत मुश्किल जॉब है, तो हवाओं में रहना, इतना टाइम जहाजों में इतने घंटे गुजारना, रोज आना डेली बेसिस, और फिर लोगों से हुस्न अखलाक से बात करना, लोग कैसे कैसे तंग करते हैं, बार बार पानी मंगवा रहे हैं, बार बार चाय मंगवा रहे हैं, कोई वॉशरूम उठ के जा रहा है, कोई बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, रास्ता रोक के ना, ऐसे सूफी भी देखे हमने। अब एक पायलट ने मुझे, जो बड़े दीनदार थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते बड़े दाढ़ी वाले नमाजी हैं, कल ही की बात है, कल वो पायलट मिले मुझसे, मैंने उनसे जहाज में नमाज का पूछा, मैंने कहा आप तो खुद नमाजी हैं, आप PIA में 25 साल पायलट रहे हैं, तो जहाज में नमाज पढ़ना में कोई जहाज को खतरा तो नहीं है? उन्होंने कहा ये जो रास्ते में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं ये बहुत सख्त खतरनाक है, क्योंकि जहाज में जरा सा भी हादसा जरा सा हुआ ना तो वो जरा सा नहीं होता, सेकेंडों के अंदर उसको हल करना पड़ता है, सेकेंडों की खता जहाज में जहाज को तबाह कर देना, सब लोगों की जान जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं जब पायलट था तो मैं कभी किसी को रास्ते में नमाज नहीं पढ़ने देता था, क्योंकि कुछ भी हो गया पीछे लोग, अच्छा जहाज का एक उसूल यह है कि पब्लिक को बताया कुछ नहीं जाता जहाज में कि कोई फन्नी खराबी हो गई है, एयर होस्टेस को सिखाया जाता है कि 100% जहाज ने तबाह भी होना है ना आपने मुस्कुराना है, कुछ नहीं ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा गई ना पब्लिक तो खिड़कियों से छलांगे मारेगी, पब्लिक बोलेगी बेटा ये घबराई है इसका मतलब कुछ है, क्योंकि जहाजों में ऐसा होता है तूफान आते रहते हैं ऊपर ना, तो जहाज में वाइब्रेशन होती रहती है, हिलते रहते हैं, दाएं बाएं होते रहते हैं, बहुत होता है जहाजों में, तो उसमें जहाज का जो अमला है उसको ये सिखाया जाता है भाई जितनी भी है, क्योंकि जब इमरजेंसी होगी पब्लिक अगर भगदड़ मिट गई तो फिर तो गए काम से, पब्लिक तो सीट बेल्ट बांध के बैठी रहे आराम से, शोर ना मिचाए, शोर मिचाया तो उनके खुद औसान खता हो जाते हैं, तो उनको तो ये सिखाया जाता है भाई जब तबाह होगा ना खुद ही पता चल जाएगा इनको कि कहीं और पहुंच गए हम, फरिश्ते फरिश्ते नजर आएंगे, उससे पहले आपने क्या करना है रिलैक्स। तो अब कल की बात है, हमारे दोस्त हैं PIA में 25 साल पायलट रहे हैं, दावत थी, बयान भी था, दावत भी थी, उन्होंने बताया, मैंने नमाज का उनसे पूछा ना, तो मैं चाहता हूं ताकि तहकीक करूं ना कि वाकई खड़े होके बीच में नम, क्योंकि बीच में ही जगह होती है ज्यादातर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है, जरा सा कोई खराबी हो गई ना जहाज की दुम में, उन्होंने दुम नहीं बोला, मैं तो वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करूंगा ना जो पायलटों की होती है, दुम में आग लग गई फर्ज करो, तो सेकंडों के अंदर हमले को भागना होता है, उसमें ये नहीं होता बीच में नीयत बांध के बंदा खड़ा हुआ है, तो बहुत बड़े मसाइल होते हैं। फिर एक नमाजी ने, उन्होंने कहा मैं हज की परवाज लेके जा रहा था, तो मैंने उन, और कहते हैं मैंने तो हादसे देखे भी है ना, वो तो खुद 25 साल जिसने जहाज उड़ाया होगा, कह रहे हैं हमने हादसे फेस किए हैं। अच्छा मैं कई पायलटों से मिला हूं, बार दफा जहाज में जो को पायलट है वो भी गपशप के लिए आ जाते हैं कभी, जो फारिग होते हैं ना, तो मैं उनसे बहुत पूछता हूं, मैंने ऐसे ऐसे वाकयात जहाजों के देखे, तो मैं तो सुनाते हुए डर रहा हूं कि लोग सफर ना करना छोड़ दें। एक पायलट ने मुझे बताया, मैं शायद सऊदी अरब जा रहा था, को पायलट थे वो, या को नहीं होंगे, को के को होंगे, बहरहाल तो बैठे हुए गपशप हो रही, मैंने कहा आप इतने अरसे जहाज उड़ा रहे हैं कोई हादसा? उन्होंने कहा मैंने एक हादसा देखा, हमने खैर हम जहाज उड़ा रहे थे, रशिया जा रहे थे हम, उन्होंने कहा रशिया वाले ने पी के उड़ाते हैं जहाज, तो रशिया में जहाज में कभी भी जिस ट्रैक पे जहाज जा रहा होगा सामने वाला, ये W11 नहीं है कि उसी ट्रैक पे आ रही हो, एन वक्त पे दाएं बाएं कर लिया, ڈبلیو جی آر میں تو ایسا ہوتا ہے جا رہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں, اینڈ وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا, یہ تھوڑا ادھر, زیادہ میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بےچارا پائلٹ, بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو, کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا, سامنے سے آ رہا تھا, غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیجن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتا چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا, آواز آئی نا کہ رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو, آگے کوئی خطرہ ہے, اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی, وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہنے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے, تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا ہو, یوں یوں گپے مار رہا ہے, چار شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی, تو پروگرام تو بڑھ گیا ہے نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا, اور وہ والے پائلٹ نے ایسے, تو وہ یہ پکڑو گے نا, وہ کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے, وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا, پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بڑا بھائی آج تو یوں یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اوڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز, یوں آ رہا ہے یہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر, تو ایسے گئے. تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں, انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل, انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا, ایک نمازی بھی بیچ میں آ گیا اور آپ بندے پھلان کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں, حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں, آپ سیٹ پہ پڑھ لیں, بعض دفعہ سعودی ایئر لائن میں تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے. اس نے بتایا عجیب, ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھ. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں. تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات انہوں نے بولا, پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا سر پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز. تو میں واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا, یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش کر دی ہم نے. ہاں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا حملہ ہے نا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے بتایا میں جہاز, پائلٹ نے بتایا میں جہاز لے کے جا رہا تھا, تبلیغی اجتماع تھا, سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے. کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو, وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دائیں بائیں ہو رہا ہے اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں اور پورا کیچڑ کیچڑ بنا دیا انہوں نے, لگ رہا تھا کسی گدا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں. تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف, وہ خود تبلیغی تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا آپ. تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو. یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی, یہ سب کی حفاظت کے لیے, تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا اور صرف اپنی نہیں اپنی بھی ڈال دو ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو,
ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان آئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہم نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جو جنہوں نے سیکیورٹی کا کہا نا وہ پولیس, تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان مشہور شخصیت کی, وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں مجھے شہادت قبول ہے. تو پولیس والے نے کہا حضرت آپ اس ملک میں جا کے شہید ہو جائیں, کائنڈلی آپ یہاں نہ ہو, آپ کو شہادت کا شوق ہے دل و جان سے, لیکن یہاں شہید ہوئے نا دائم 25-30 پولیس والے بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے, پبلک بھی شہید ہوگی اور ملک کا امیج دنیا میں کیا جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو ہم آپ کی شہادت کے شوق کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے, لیکن آپ یہاں شہید نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہاں سیکیورٹی فل دیں گے, باقی آپ کہیں اور کسی ملک میں جا کے اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے جنت میں جانے پر آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے آپ جہاز میں ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے, آپ پہ اللہ پہ توکل کرتے ہو, تو دوسروں کو نہیں مرواؤ میرے بھائی. اچھا کیا ایک وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, اتنی ولیمے کے لیے الگ سے چھت, اتنی چھتیں کہاں ہیں بھائی لوگوں کے پاس. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید ولیمہ جو ہے نا سنت ہے رخصتی کے بعد, تو رخصتی کا مطلب میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں بس, بے شک 15 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں, یعنی دلہن گھر آ جائے شوہر کے, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہو گئے گپ شپ لگا لی بس, اس کا مطلب رخصتی شریعت کی نظر میں ہو گئی ہے, تو اس کے بعد ولیمہ سنت. رخصتی سے پہلے جو ہوگا وہ شریعت میں ولیمہ نہیں کہلائے گا, اس میں سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے, حدیثوں میں جتنی تاکید ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے, لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. پیسے نہیں ہے سستا ولیمہ کر دو. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید و فروخت کا عمل حرام ہے؟ خریدی ہوئی چیز اور کمایا ہوا مال بھی حرام ہے. خریدی ہوئی چیز کمایا ہوا مال حرام نہیں ہے, لیکن خرید و فروخت ناجائز ہے. جس طرح حضرت علی نے خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح کہا, عبداللہ بن عمر بھی خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اس طرح ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ کسی نے کہا کہ انجیل علی مرزا نے یہ بات کہی ہے. ہاں یہ دلیل صحیح ہے کہ کافر کے الگ احکام ہیں, ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا, تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھی گئی ہے, حالانکہ وہ باغی تھے گناہگار تھے, ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی. انسان جب اسلام میں دین کی جو بیسک ضرورت جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں ان کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی فرض نماز کا انکار کر دے, مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کر دے اور تاویل بھی نہ ہو اس کے پاس کوئی, مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دے یا توحید کا انکار کر دے, شرک کرنا شروع کر دے, نبی کو بغیر کسی تاویل کے حاضر ناظر مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے, پھر بھائی خود بہت ہو جاتا ہے کافر, پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. ابے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کرو یار, جائز ہے بھائی یہ جو پوچھا ہے نا انہوں نے جائز ہے. مفتی سے اب کسی چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا ہے تو ان سے بولو چھپڑ میں پوچھ لینا. یہ مفتی صاحب کیا دجال کی کیا بولے, ساری حدیث کے مطابق صحیح حدیث کے مطابق گدا ہوگا دجال کا یا اس دور کی کوئی سواری ہوگی جیسے کہ جہاز وغیرہ؟ کیا بہت مشکل ہے, باقی پڑھ کے مجھے بتا دو کیا لکھا ہوا ہے. دجال کے بارے میں جو گدھے کے بارے میں آتا ہے نا, تو دونوں رائے ہو سکتا ہے, گدا ہو سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو گدھے سے تعبیر کیا ہو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام تلواروں کے سائے میں ہے, تو کیا مطلب اب تو لڑائی کلاشن کوفوں سے ہوتی ہے جہاد, تو اب کوئی مجاہد کہے چونکہ اسلام میں تلواروں کے سائے میں ہے لہذا میں جہاد میں تلوار سے لڑوں گا کیونکہ سایہ تلواروں کا ہوگا تو جنت میں جاؤں گا, تو ہم کیا کہیں گے بھائی مراد تلوار نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے کا اسلحہ کیا تھی؟ تلوار تھی, تو تلوار ایک علامت ہے, مراد جو بھی اس زمانے کا اسلحہ ہو. تو عین ممکن ہے دجال کا جو گدا ہے وہ گدا نہ ہو, وہ کوئی ٹینک ہو, وہ کوئی بختربند گاڑی ہو, تو جو اس زمانے کا گدا ہوگا ٹھیک ہے نا, تو یہ ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ, کیونکہ خود گدا ہوگا تو ہو سکتا ہے گدے پہ ہی آئے وہ, ترقی کے دور میں بھی بولے گدائی گدے پہ جانا ہے میں نے.
क्यों एक पर्चा तुमने बीच से निकाला है, ऐसा ही पढ़ लो ना उसको, सवाल जाया नहीं करो। मुफ्ती साहब क्या ये जायज है मेरे लिए, मैंने 5 लाख की जमीन खरीदी, 40,000 बयाना दिया, स्टैंप पेपर पर लिख दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा और 2 दिन में उस जमीन को मैंने 6 लाख में बेच दिया, 5 उसको दी, 1 लाख खुद लिया। हाँ जायज है, जमीन कब्जे के बगैर भी बेच सकते हैं। मनकूली अशिया जो है ना, मूवेबल अशिया, उनको आगे बेचना जायज नहीं है जब तक कि उन पे खुद कब्जा ना कर लिया जाए। लेकिन जमीन कोई मूवेबल चीज नहीं है, मनकूली चीज नहीं है, नकल नहीं हो सकती यहां से वहां, तो उसमें हिबा में तो जरूरी है, गिफ्ट जब कोई दे तो कब्जा जरूरी है, लेकिन बेचने के लिए कब्जा जरूरी नहीं है। खरीदी और आगे किसी को पहना दिया आपने, यानी सॉरी बेच दिया आपने। अलबत्ता इतना जरूर है कि वो जमीन का वजूद हो, उसकी लोकेशन मालूम हो, पता हो कि कहां है, खाली फाइलें नहीं हो। बाज दफा अभी एक शुरू हो रही है एक प्रोजेक्ट, फाइलें ही फाइलें बिक रही हैं, 5,000 की फाइल ली, 10,000 की पहना दी, ये जायज नहीं है। समझते हो, फाइल के पीछे जमीन होनी चाहिए, पता हो ये जमीन है जी, आप जाके देख सको, हाँ भाई अगर देखना चाहो तो ये जमीन है, ये नंबर है इसका। तो बाज दफा फाइलें होती है, पीछे कुछ होता ही नहीं उसके, वो कहते हैं अभी तो पैसे आएंगे तो हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो फिर जब जायज नहीं है। फिर फेस वैल्यू पे तो बेच सकते हो कि जितने की फाइल दी उतने की पहना दी, प्रॉफिट नहीं ले सकते। हाँ फ्लैट भी ऐसे, फ्लैट आपने खरीदा कब्जे से पहले आगे किसी को पहना दिया, लेकिन खरीदने का मतलब क्या ये समझो, आपके रिस्क में आ गया हो। जैसे आपने फ्लैट खरीदा, बयाना दे दिया, अब आपका फ्लैट हो गया, इत्तेफाक से फ्लैट में आग लग गई, तो आपका नुकसान समझा जाए। वो स्टेट एजेंट कहे भाई आपका फ्लैट था, बयाना था, ये तो आप अभी बेशक कागज में आपके नाम नहीं हुआ है लेकिन ये है किसका, आपका है, अभी गोया कि आपने पेमेंट भी नहीं की लेकिन आपका है, तो अब तबाह हुआ है तो आपका नुकसान। तो इतना रिस्क आ चुका हो तो आगे बेच सकते हैं, क्योंकि बाद दफा रिस्क में नहीं आता। आपने खाली फाइल ली, अभी फ्लैट को यही समझा जा रहा है कि ये उसी का है जिसने बेचा है आपको, तबाह हो गया तो उसी का नुकसान समझा जा रहा है, तो फिर नहीं। शरीयत में उसूल ये है कि जिस चीज का आप नुकसान नहीं उठाते ना, उसका प्रॉफिट भी नहीं उठा सकते। समझते हो कि नहीं समझते। अब प्लॉट आपने खरीदा, इस पोजीशन में आ गया वो प्लॉट कि अगर उस पर कब्जा हुआ तो आपका नुकसान समझा जाएगा, डाकू ने कब्जा कर लिया तो अब ये समझा जाएगा भाई आपका नुकसान है। तो इसलिए जब फ्लैट खरीदो ना, तो आगे बेचने से पहले जो मालिक है उसको कह दिया करो, भाई अब ये मेरा है, ये इसका अच्छा बुरे का जिम्मेदार कौन है, मैं हूं। तो इस पोजीशन में आएगा तो अब फिर आगे आप उसको बेच सकते हो, इस पोजीशन में अगर नहीं आया तो फिर ये खरीदना खरीदना कहलाता ही नहीं है शरीयत। समझते हो, यानी ऐसा खरीदना नहीं कहलाता जिसकी बेस पे आगे बेचना आपके लिए जायज हो, क्योंकि हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि जिस चीज का तुम रिस्क नहीं उठा रहे ना, उसका नफा भी नहीं तुम ले सकते। क्योंकि इस्लाम ने ना ये फाइलें घुमाने और ये खाली जो पहनाई जा रही है ना, रिस्क उठा नहीं रहे, बस इधर से उधर पहनाए जा रहे हो, वो कब्जा हो गया तो आप कह रहे हो भाई मेरे तो थी नहीं, तो क्यों नहीं थी भाई, जब आपने आपने माहदा हो गया तो आपका प्लॉट है, अगर उस पे डाकू ने कब्जा कर लिया तो आपका नुकसान समझे जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, हाँ जेरे तामीर अगर फ्लैट है तो उसका भी रिस्क आप अगर वो आप उसका रिस्क नहीं उठा रहे तो फिर आप उसको आगे बेच नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो जेरे तामीर फ्लैट होते हैं आप पैसे दे चुके होते हैं, उसमें भी अगर जलजले से वो फ्लैट तबाह हो गया, डाकुओं ने कब्जा कर लिया, तो आप ही का नुकसान समझा जाता है। वो बिल्डर कह देगा भाई आपका फ्लैट था, मैंने तो उसकी गलती ना हो ना, उसकी गलती है तो फिर तो वो जामिन होगा, वो कह रहे मेरी गलती नहीं, जलजला आ गया तो भाई आपके पैसे डूब गए। तो अगर इस पोजीशन में है वो फ्लैट, जलजला आने से वो अगर खराब हो जाए तो आपका नुकसान समझा जाए, तो फिर आप उसको आगे फरोख कर सकते हो। मुफ्ती साहब मेरे चाचा के इंतकाल हुआ है, हमारी चाची इज्जत में है तो इनसे हमारा अभी पर्दा होगा, चाची से तो वैसे भी पर्दा है मेरे भाई, चाची नामहरम में दाखिल है तो इज्जत के दौरान तो और ज्यादा पर्दे के अहकाम सख्त हो जाते हैं। तो चाचा का इंतकाल हो गया तो इज्जत में भी और इज्जत के बाद भी चाची के लिए जायज नहीं है कि अपने चाचा के अपने शोहर के भतीजों के सामने बेपर्दा हो गया। हाँ चाची बूढ़ी है, बहुत उम्र वाली है तो एक अलग बात है। शरीयत में चचा के इंतकाल के बाद बेवा चची से निकाह भी जायज है, समझते हो, मामू के इंतकाल के बाद उसकी बेवा से इज्जत के बाद
جائز ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نامحرم رشتے ہیں. بس